inshallah. Alhamdulillah, aur Allah subhanahu wa ta'ala ki neemton mein subah subah behtareen subah alhamdulillah ki hame ek aur mauka mila, ek aur din ka aagaaz hum kar rahe hain aur inshallah kabhi hum is pe gaur karte hain ki hum یعنی کہ جب ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا نا اپنی کتاب زندگی کے حوالے سے کہ ایوری مارننگ جب ہماری صبح ہوتی ہے تو ہماری جو کتاب ہے جسے کہ ہم نے قیامت کے دن خود پڑھنا ہے نا اقرا کتابک رائٹ اس کا بلینک پیج کھل جاتا ہے اور آج اسے ہم نے لکھنا ہے رائٹ کبھی ہم نے اس پہ تدبر کیا ہے کبھی غور کرتے ہیں ہم کہ آج صبح اٹھے تھے تو الحمدللہ ہمارا نیو پیج اپنی بک کا کھلا ہوا ہے اور ہم لکھ رہے ہیں نا اور آپ دیکھیں کہ صبح سے غور کریں کہ ہم نے اب تک کیا کیا لکھا اور یہ والا ٹائم کتنا بہترین ٹائم ہوگا نا جو کچھ بھی ہم لکھیں گے آج کے دن میں لیکن یہ جو ہمارے دو گھنٹے آلموسٹ دو سے ڈھائی گھنٹے ہیں ٹو آورز ہیں جو کہ ہم اپنی بک میں اس کو انشاء اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہوں گے اور ہمارے فرشتے بھی لکھ رہے ہوں گے تو یہ کتنا بہترین ٹائم ہوگا کہ اللہ رب العزت کی کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں سیکھنے آئے رائٹ دل میں یہ اس محبت کے ساتھ کہ ہم اللہ کی کتاب کو ٹھیک پڑھنا سیکھیں کہیں اپنی تربیت کریں رائٹ اور یہ سب لرن کریں تو یہ کتنا بہترین ٹائم ہے نا اور انشاءاللہ آج آپ نے پورا ٹائم اس تدبر کے ساتھ گزارنا ہے ایٹ لیسٹ آج کا دن کہ ہم جو بھی آج لکھ رہے ہیں وہ کیا لکھا جا رہا ہوگا میری بک میں آج رات تک میں کیا کیا لکھوں گی نا تو ایک کانشیسلی جب ہم اس کو غور کریں گے غور و فکر کریں گے تدبر کریں گے کہ ہم نے آج کے دن میں اپنی بک میں کیا لکھا تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم ایک ایک دن کو اس طرح سے غور کریں تو کچھ نہ کچھ امپروومنٹ تو آئے گی نا اگر ہم کانشیسلی ایفرٹ کریں انشاءاللہ تو جی تو امید ہے کہ آپ سب اس پر ضرور آج انشاءاللہ غور کریں گے اور صبح کا ہی آغاز ہے اور اچھا انشاءاللہ الحمدللہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو کوشش کریں گے کہ آخر تک بھی اچھا اچھا ہی لکھا جاتا رہے ہماری بک میں ٹھیک ہے چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا آپ اٹینڈنس کے لیے ریڈی ہو جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم عظمیٰ فضل میمونہ پروین بشرا احمد رابعہ اکبر سبیحہ خان شازیہ عامر زرینہ محمد سلمہ شیخ نبیلہ عامر فارقہ احمد عظمہ طاہر شمائلہ ارشد یاسمین اقبال زہرا ترابی شہناز فاطمہ نرگس رحمان تنویر جہاں رخشندہ عزیز نادیہ ناز مسعود غزالہ شاہد جی اگر کسی کا نام میں نے نہیں لیا تو وہ پلیز اپنی اٹینڈنس مارک کیجیے اپنی آئی ڈیز کے ساتھ جزاکم اللہ خیرا کثیرا اور انشاءاللہ اب ہم اپنی تجوید کا پیریڈ سٹارٹ کریں گے سسٹر ہنا اگر آپ موجود ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے اوکے الحمدللہ تو چلیے پھر انشاءاللہ تجوید کے لیے ریڈی ہو جائیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ اوکے آج ہمارا تجوید رولز کا ڈے ہے سو کہاں تک ہم پہنچ گئے تھے تھوڑا ریمائنڈ کرائیے آئی تھنک ہم نے نون ساکنہ کے رولز شروع کیے تھے پر آئی ایم ناٹ شیور کہ ہم ان کو ختم کر چکے ہیں یا نہیں اخفا کر لیا تھا اوکے صحیح ओके, इसका मतलब है हम चारों रूल्स कर चुके ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आपको समझ आ गए? ओके, कोई सवाल है तो कर लीजिए। इख्फा में बस यही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर देखा जाए तो आई थिंक इदगाम में भी सिर्फ इदगाम नाफिस प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, यानी जहां की नून साकिन या तनवीन के बाद। ओके, आप बताइए कौन सा होता है इदगाम नाफिस? नून साकिन में कौन सा वाला इदगाम नाफिस होता है, जब नून साकिन या तनवीन के बाद कौन से लेटर्स आए? या एंड वाव, गुड। तो जब या और वाव आते हैं तो इदगाम नाकस होता है। एक आपको इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, बाकी जो है वो इख्फा के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये जो दो रूल्स हैं इनके ऊपर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, क्योंकि इनकी आवाजें थोड़ी डिफिकल्ट हैं। अगर आप नाकस इदगाम को सही तरह अदा नहीं करते तो वो किसी एक तरफ रुझान रखता है, यानी या तो ज्यादा नून लगेगा और या फिर ज्यादा या वाव लगेगा। और इख्फा में ये है कि आपको हर लेटर के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कि आपने नून को हाइड करना होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि नून आप हाइड कहाँ करते हैं, नेक्स्ट लेटर के मखरज में। तो बिल्कुल नेक्स्ट लेटर का जो मखरज होता है उसके आप करीब जाते हैं और वहां जाके आपने नून को हाइड करना होता है। यानी जैसे तो इसमें आप डायरेक्शन भी देखते हैं कि आपकी जो टिप है, एक तो वो ता के मखरज के क्लोज हो, दूसरा जो आवाज का प्रेशर है वो भी ता के मखरज के ऊपर जा रहा हो ना, यानी अंदर की तरफ ना जा रहा हो। फिर मैंने आपको बताया था कि तीन लेटर्स ऐसे हैं जिनमें आप मखरज को हिट करते हैं, लाइक ऑलमोस्ट आप छू रहे होते हैं, आप मखरज को टच कर रहे हो। लेटर्स कौन से थे? कॉफ, काफ एंड फा। तो ये तीन लेटर्स ऐसे हैं जिनमें आप नेक्स्ट लेटर के मखरज को टच करते हैं। और एक्चुअली मैं जब इसके ऊपर थोड़ा गौर फिक्र करती हूँ ना कि क्यों हम तीन लेटर्स में टच करते हैं, बाकी तमाम लेटर्स में टच नहीं करते, क्लोज जाते हैं, तो इसमें ये होता है कि अगर आप असल जो चीज है ना वो ये कि आपने नून हाइड करना है। तो अगर आप बाकी लेटर्स के मखारिज को देखें तो इख्फा के तमाम लेटर्स, यानी कॉफ, काफ और फा के अलावा, बाकी तमाम लेटर्स जो हैं या टिप ऑफ टंग से आ रहे हैं और या फिर मिडल ऑफ टंग से आ रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर आप इख्फा के इन लेटर्स को टच कर लेते हैं तो वो नून की बहुत क्लोज साउंड देगा, यानी वो इख्फा नहीं लगेगा, वो नून की बहुत क्लोज साउंड होगी। जैसे अगर नून साकिन के बाद ता रहे है और आप ता के मखरज को टच कर लें तो ये साउंड यूं आएगी, फिर ये इख्फा नहीं लगेगा, ये पूरा नून लगेगा। इसी तरह से जैसे अगर शीन आ रहा है इन शाह में, अगर आप मिडिल पार्ट को टच कर देते हैं तो ये साउंड आएगी इन शाह इन, ये भी नून की साउंड है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो नून की साउंड में थोड़ा 19-20 का फर्क हो जाएगा, लेकिन साउंड नून की ही आ रही होगी। नून के लिए ये है कि अगर आप ना इस एरिया के ऊपर कहीं पर भी टिप को या मिडिल को टच करते हैं तो वो नून की बहुत क्लोज साउंड देते हैं, इतनी साउंड जैसे जिससे ना वो नाक यानी क्लियर नून साउंड आने लग जाती है। तो नहीं, इसमें भी टच नहीं करते। दाल में भी जैसे अगर आप जरा टच करें ना उसको, हम उसके क्लोज ही जा रहे होते हैं, अगर आप टच करें तो इट साउंड्स लाइक अन, वहां से भी नून की थोड़ी आवाज आने लग जाती है। तो इसलिए आप उन एरियाज के भी क्लोज जाते हैं, लेकिन अगर आप फा को टच करें तो आप देखें साउंड फिर भी इख्फा की ही है। अंग, ये भी अब हाइड है नून। कॉफ के लिए भी हाइड ही लगता है। तो इन एरियाज को आप टच करते हैं और साउंड अभी भी आपकी हिडन नून की ही है। नहीं, बिल्कुल स्लाइट टच होता है। ठीक है, थोड़ा यानी ऐसा नहीं हम कह सकते कि बहुत दूर रखेंगे, बहुत दूर नहीं, ऐसे जैसे टंग टिप जो है वो टच करने की कोशिश भी करिए एंड यू आर पुलिंग इट बैक एज वेल, इन दोनों चीजें इकट्ठी हो रही होती हैं कि वो वहां दबाव नहीं डालती, यानी टिप जो है वो स्लाइड जैसे बहुत क्लोज चली जाती है, ऐसे जैसे छूने लगी है, मतलब इस तरह से चली जाती है, और मे बी हल्की सी लगती भी है लेकिन वो वहां दबेगी नहीं। लेकिन काफ, कॉफ और फा में ना आप थोड़ा प्रेशर देते हैं, काफ को तो अच्छा प्रेशर देते हैं, इंक या इंक क्या ना, और इसी तरह से कॉफ में भी कोलू, ठीक है, और फा में भी आप थोड़ा सा प्रेशर देते हैं। प्रेशर एंड डायरेक्शन साउंड, जो डायरेक्शन ऑफ साउंड है ना, जैसे फॉर एग्जांपल लेटर है अल्टा, ठीक है, इसमें अगर आप इसको बोलें आउटा आउ, ये जो साउंड है ना आउ, इस साउंड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है आउ, और ये हैवी अख्फा हो जाता है। ये जो डायरेक्शन है ये टिप की तरफ है और ये लाइट अख्फा है, ठीक है, ये होता है डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। ये आपने थोड़ा सा फील करना होता है, इसको आप ना या के इदगाम से महसूस कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना आई आई, ये जो साउंड है इसका प्रेशर बाहर की तरफ है आई, लेकिन अगर आप इसको आउ करके बोलें तो वो अंदर जा रहा है, तो वो हैवी हो जाता है इख्फा, ठीक है। इख्फा हैवी करने के लिए जैसे अगर तो आ रहा है बाद में तो इख्फा हैवी होता है, जैसे यौकून तो इख्फा हैवी होता है। इख्फा को हैवी करने के लिए ना आपको जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग है उसको ऊपर उठाना पड़ता है, जबान का सबसे पीछे वाला जो हिस्सा है उसको आपको ऊपर उठाना पड़ता है, यौकून, ठीक है। ये भी वही चीज है कि जो प्रेशर है ना, अब आपका यौ थोड़ा मुंह के अंदर नहीं जाएगा, हलक की तरफ नहीं होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन थोड़ी इनसाइड होगी, यानी बिल्कुल टिप के ऊपर या बाहर मुंह से नहीं निकल रहा, जैसे अल्टा और आओ बो, तो आओ में अब ये थोड़ा डीप पार्ट ऊपर चला गया ना, तो उसकी तरफ इसका ज्यादा प्रेशर है, जबकि अल्टा में टिप है और मुंह से बाहर निकल रहा है। बट इट टचेस द पैलेट एट सम पॉइंट, जी काफ कॉफ के लिए तो करता है, पैलेट को टच करता है, हैवी इख्फा करने के लिए अगर आप कह रही हैं तो टच नहीं करता, सिर्फ ऊपर डीप पार्ट जो है वो ऊपर जाता है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये चार हमने रूल्स किए थे, टंग विल बी स्ट्रेट फॉर व्हाट, फॉर हैवी इख्फा, जो डीपेस्ट पार्ट है वो ऊपर जाएगा, फिर आपकी टंग स्ट्रेट नहीं होगी। फॉर लाइट इख्फा, मखरज जो है ना, लेटर का जो मखरज है, जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है वो आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेटर वाला जो मखरज है वो आप यूज करते हैं, जैसे अंता में अब आपकी टिप टंग पीछे से स्ट्रेट है लेकिन टिप आपकी ऊपर जा रही है गम ता के मखरज पर, या अगर सा आ रहा है बाद में तो सा के मखरज पे जारी है। ठीक है, तो ये अल्फीकू, इसमें आपके जो ऊपर वाले दांत हैं वो नीचे वाले लिप के ऊपर आ जाएंगे, इसके अंदर आपकी टंग बिल्कुल थ्रू आउट स्ट्रेट होगी, बैक से भी और फ्रंट से भी, अल्फीकू इस तरह से। ठीक है, अंतर जब बोलेंगे तो टंग ताके मखरज के क्लोज जाकर स्लाइड टच करेगी, हाँ कह सकते हैं, बहुत स्लाइड, यानी वहां दबाएंगे नहीं, अगर दबाएंगे तो फिर आपकी नून की आवाज आने लग जाएगी, तो आपने प्रेशर नहीं देना, प्रेशर उसको दबाए नहीं। ठीक है, तो अगर थोड़ी बहुत लग रही है और इख्फा की साउंड ठीक आ रही है तो इट्स ओके, अगर हल्की सी बिल्कुल छू रही है तो इट्स ओके। क्योंकि अगर आप ज्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे ना, क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कि करीब लेकर जाएं, तो उससे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ज्यादा डिस्टेंस पे रखते हैं. अगर आप ज्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे तो आपके सारे इख़्फ़ास की एक जैसी साउंड आएगी. ठीक है, तो ज्यादा बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं रखना, मखरज के बहुत क्लोज जाते हैं. सही, ओके. तो आज हम ज़ा को कैसे करेंगे? अच्छा, ज़ा के लिए इख़्फ़ा कैसे करेंगे? जैसे ये वर्ड आपने लिखा है वलहमल खिंजीरी, तो इसमें आप की जो टिप है वो नीचे वाले जो इंसाइजर्स है ना, नीचे वाले जो दांत है उनके पीछे होगी. अल खिज, बिल्कुल ये पोजिशन, खिंजीरी. ठीक है, वलहमल खिंजीरी इस तरह से. तो नेक्स्ट लेटर के इसको जैसे वही मैंने आपको बताया था ना कि बीच में से नून हटा दें और दो लेटर्स मिलाएं, यानी नून हटा के तो ख और ज़ा को मिला के चेक कर लें. एग्जैक्टली यही पोजीशन ऑफ टंग भी यही होगी और डायरेक्शन भी यही होगी. देखें अब आपकी जबान स्ट्रेट है और क्या फ्रंटल जो टिप है वो नीचे वाले दांतों के इंसाइजर्स के पास है, इनर प्लेट्स के पास है. नीचे वाले जो इंसाइजर्स हैं उनकी इनर प्लेट्स के पास है. और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन भी साउंड की उसी के ऊपर आ रही है, टिप के ऊपर आ रही है. खिज, बिल्कुल ऐसे ही, अल खिंजीरी. इस तरह से. ओके, सही. आज हम इंशाल्लाह मीम के पढ़ते हैं रूल्स. بسم الله الرحمن الرحيم. هيفي لترز میں پریشر ان سائڈ ہوگا. جی ہیوی لیٹرز میں پریشر ان سائڈ, ناٹ ان سائڈ دی تھروٹ. ٹھیک ہے, ان سائڈ دی ماؤتھ. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں بالکل حلق کی طرف آپ نے پریشر نہیں کرنا, بالکل اندر حلق کی طرف اگر کریں گے نا تو وہ بھی ساؤنڈ ٹھیک نہیں دیتا. تو منہ کے اندر رہے گا, ڈیپسٹ پارٹ جب اوپر اٹھتا ہے نا تو منہ میں آپ کا پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے. جی گنا کے بارے میں اب ہم انشاریں گے, پھر ہم دیکھیں گے کہ اخفا کے اندر کون سا گنا ہو رہا ہے. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو میم ساکن کے احکامات ہیں ان میں بھی اب ہم پہلے ہم نے کیا کیا تھا, نون ساکن کو بولنے کے طریقے دیکھے تھے اور ہم نے دیکھا کہ تنوین کے اندر بھی ایک آڈیبل نون ساکن موجود ہوتا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ میم ساکن کو کس طرح سے بولا جاتا ہے. تو میم ساکن کو آپ تین طریقوں سے بول سکتے ہیں. نون ساکن کو ہم چار طریقوں سے بول سکتے تھے, ادغام, اقلاب, اخفا اینڈ اظہار. میم ساکن کو ہم تین طریقوں سے بول سکتے ہیں, ادغام, اخفا اینڈ اظہار. اور چونکہ میم کا جو مخرج ہے وہ لپس ہے, تو اس مناسبت سے ہم اس کے احکامات کو بھی نا لپس سے ریزامبل کرتے ہیں, یعنی شفوی کر کے. جیسے ادغام ہے تو ادغام شفوی, اظہار ہے تو اظہار شفوی, اور اخفا ہے تو اخفا شفوی. ٹھیک ہے, یعنی یہ تین طرح کے احکامات آگے, ادغام شفوی, اخفا شفوی اینڈ اظہار شفوی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد اگر حرف میم آ جائے تو ہم ادغام کر کے بولتے ہیں, اور اس ادغام کو ہم کہتے ہیں ادغام شفوی. ٹھیک ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام شفوی. اور یہ صرف ایک ہی حرف میں ہوتا ہے, یعنی ادغام شفوی सिर्फ एक हर्फ में होता है, कौन से हर्फ में, कि अगर मीम साकिन के बाद हर्फ मीम आ जाए, जैसे मिन हुम मा, तो मिन हुम के बाद क्या आ गया, मीम, मीन मिन हुम, पहला वाला मीम साकिन होगा, दूसरा वाला जो मीम है वो हरकत के साथ होगा, और यहां पे आप क्या करेंगे, इदगाम करके पढ़ेंगे। अब जैसे हमने नून साकिन के इदगाम को देखा था, और हमने कहा था कि जो नून साकिन का इदगाम है वो सिर्फ दो वर्ड्स में होता है, यानी अगर पहला वाला वर्ड नून पर या तनवीन के ऊपर एंड हो रहा हो और दूसरा वर्ड यरमलून से शुरू हो रहा हो तब इदगाम होता है। जबकि अगर हम इदगाम शफवी के रूल को देखें तो ये दो वर्ड्स में, अमूमन दो वर्ड्स में पाया जाता है, यानी पहला वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो मीम साकिन मिलेगा और जो दूसरा वर्ड है वो मीम से शुरू होगा, मीम हरका से, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इदगाम करके पढ़ेंगे, ठीक है, यानी दो वर्ड्स में ही ये आपको ज्यादातर रूल मिलेगा। लेकिन इसकी एक एग्जाम्पल हमें विद इन अ वर्ड भी मिलती है, यानी इसकी एक एग्जाम्पल ऐसी है जो कि हमें एक वर्ड के बीच में भी मिलती है, किसी को पता है? नॉट मिम्मा। अच्छा, मिम्मा को क्या, आपने कैसे कहा कि ये दगाम शफवी हो रहा है? मिम्मा, अच्छा, यानी मीम तशदीद है तो आपने पहला वाला मीम साकिन लिया, राइट? ये भी अच्छा हुआ, मैं आपको इसमें एक चीज बताती चलूं कि जो तशदीद वाला हर्फ है ना, जो तशदीद वाला हर्फ है इसके अंदर दो सेम्स बोले जाते हैं, सही, दो सेम लेटर्स बोले जाते हैं, ये कहना दुरुस्त है, लेकिन दो सेम लेटर्स पाए जाते हैं ये समटाइम्स दुरुस्त नहीं होता, राइट? यानी दो सेम लेटर्स बोले जा रहे हैं कि आप पहला लेटर साकिन बोल रहे हैं, दूसरा वाला हरकत के साथ बोल रहे हैं, ये सही है, लेकिन समटाइम्स तशदीद के अंदर दो डिफरेंट लेटर्स होते हैं, सेम लेटर्स नहीं होते, ओरिजिन में दो डिफरेंट लेटर्स होते हैं। जैसे आपने ये एग्जाम्पल दी ना मिम मा की, तो इसका ओरिजिन है मिन मा। अब ये जो नून है ना, ये बीच में राइटिंग में नहीं आया, ये नून जो है ये राइटिंग से हट गया, अब ये राइटिंग के अंदर मौजूद नहीं है, तो अब पढ़ने में तो आप दो मीम्स पढ़े, पहला वाला मीम साकिन पढ़े हैं और दूसरा वाला मीम हरकत के साथ पढ़े, लेकिन ओरिजिन में क्या है, पहला वाला नून साकिन है और दूसरा मीम साकिन है, पहला वाला लेटर क्या है, नून साकिन है, और दूसरा वाला लेटर क्या है, मीम साकिन है। तो जैसे इल्ला होता है, अब इल्ला जब आ जाते हैं तो आप दो लाम्स पढ़ते हैं, यानी इल तो तशदीद के नीचे दो हरूफ पढ़े जा रहे हैं, पहला लेटर साकिन पढ़ा जा रहा है, दूसरा हरकत के साथ, लेकिन ये इल्ला नहीं है, ये है इनला। इंशाल्लाह इसके बारे में हम ये सारे वर्ड्स पढ़ेंगे डिटेल से इंशाल्लाह जब हम थर्ड बुक पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने ये चीज याद रखनी है कि दो सेम लेटर्स नजर आ रहे हैं तो हम उन्हें, हाँ, अगर दो सेम लेटर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, फिर आप उनको इदगाम कंसिडर करें, या अगर आपको एक तशदीद वाला लेटर नजर आ रहा है और आपको उसका ओरिजिन पता है, यानी आपको पता है कि हाँ इसका ओरिजिन ये है, फिर आप उसको इदगाम कंसिडर करें, उस स्पेसिफिक या नून साकिन का है या मीम साकिन का, और अगर ओरिजिन नहीं पता तो हम इन वर्ड्स को फॉर द टाइम बीइंग छोड़ देंगे, हम इनको बाद में इंशाल्लाह बुक थ्री जब पढ़ेंगे तो हमें ये ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मिम मा के अंदर नून साकिन का इदगाम है, ठीक है, नॉट शफवी। सो एनीवेज दैट वाज समथिंग डिफरेंट। तो मीम साकिन के बाद अगर हर्फ मीम आ जाता है दो वर्ड्स में तो इदगाम होता है जनरली, लेकिन इसकी एग्जाम्पल हमें विद इन अ वर्ड भी मिलती है, और वो है वर्ड अलिफ लाम मीम। अब अलिफ लाम मीम ये एक वर्ड है, ठीक है, इस एक वर्ड के अंदर अगर आप देखें लाम का जो लास्ट ऑडिबल मीम साकिन है, ये मीम के फर्स्ट मीम के साथ इदगाम करते हैं. मुझे उम्मीद है कि मुझे आपको ये ज्यादा बारीकी से नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने इससे पहले जब मदलाजिम की थी तो हमने इसको अलग अलग तोड़ के तो हमने बहुत अच्छी तरह से डिटेल से देखा था कि लाम के अंदर थ्री लेटर्स हैं, लाम अलिफ एंड मीम, और मीम के अंदर थ्री लेटर्स हैं मीम या एंड मीम. तो लाम का जो इख्तिताम है वो मीम साकिन पर हो रहा है और मीम की जो बिगिनिंग है वो मीम कसरा से हो रही है. तो यहां पर आपके पास इदगाम आता है विद इन अ वर्ड, और इस इदगाम को हम क्या कहते हैं, इदगाम शफवी. इस इदगाम का एक और नाम भी है, इसको हम इदगाम मिसलैन सगीर भी कहते हैं. ठीक है, इदगाम मिसलैन सगीर का क्या मतलब है? इदगाम शफवी तो जैसे मैंने आपको बताया कि इदगाम लिप्स में हो रहा है, इस वजह से हम इसको कहते हैं. इदगाम मिसलैन सगीर का क्या मतलब है? मिसलैन कहते हैं सिमिलर को, मिसल एक जैसे. तो ये इदगाम मिसलैन दो सिमिलर लेटर्स में हो रहा है. मिसलैन जो है ये, अब माशाल्लाह आप लोग ग्रामर भी पढ़े हैं तो आपको पता होगा ये मुसन्ना है, तस्निया का सीगा है. मिसलैन दो सिमिलर लेटर्स, मिसल तो दो सिमिलर लेटर्स में इदगाम हो रहा है. सगीर उस इदगाम को कहते हैं जिसमें पहला लेटर साथ और दूसरा लेटर हरकत के साथ हो. जैसे नून साकिन है और फिर उसका इदगाम होता है यरमलून में, तो ये भी सगीर इदगाम है. ठीक है, मीम साकिन का इदगाम मीम में होता है, ये भी सगीर इदगाम है. तो सगीर आप किसके लिए टर्म यूज करते हैं? वैसे सगीर का मतलब होता है ना छोटा, लेकिन जब हम इदगाम सगीर कहते हैं तो ये उस इदगाम की बात होती है जिसमें पहला लेटर आपके पास साकिन आ रहा हो और दूसरा लेटर आपके पास हरकत के साथ आ रहा हो. तो इस तरह के इदगाम को आप कहते हैं सगीर. ठीक है, तो मिसलैन सगीर जैसे चूंकि दो सिमिलर लेटर्स हैं, मीम साकिन है और फिर उसके बाद मीम आ रहा है, तो इस इदगाम को हम मिसलैन सगीर कहते हैं. लेकिन आपने इंशाल्लाह अपने माइंड में रखना है कि मिसलैन सगीर जो है वो और भी इदगाम हो सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल नून साकिन का जो इदगाम आपने देखा उसका जो इदगाम नून के साथ होता है ना, नून साकिन के बाद जो नून आ जाता है उसको भी हम मिसलैन सगीर कहते हैं. सही, सिमिलर लेटर्स में हमेशा मिसलैन सगीर होगा, लेकिन मीम के इसलिए इदगाम को मिसलैन सगीर कहते हैं क्योंकि ये होता ही सिर्फ मीम में है. जी, आपने इसको मिसलैन सगीर से भी याद रखना है. ठीक है, बिल्कुल फेमस टर्म तो शफवी है. हाँ बिल्कुल, इदगाम शफवी को ये नाम दे रहे हैं. ये दोनों नाम अपने माइंड में रखने हैं, इदगाम शफवी भी एंड इदगाम मिसलैन सगीर भी, कि मिसलैन सगीर वो इदगाम है जो मीम साकिन का इदगाम है. ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप अपने माइंड में ये रखें कि हम इसके बारे में मजीद अभी डिटेल्स और पढ़ेंगे. मिसलैन सगीर सिर्फ एक इदगाम को मिसलैन सगीर नहीं कहते, लेकिन हम इसके बारे में अभी मजीद डिटेल्स इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में ना. ओके, सो इदगाम मिसलैन सगीर या इदगाम शफवी में हमने देखा कि मीम साकिन के बाद जब मीम आ जाता है तो वहां पर किए जाने वाले इदगाम को शफवी या मिसलैन सगीर कहते हैं. और ये इदगाम दो वर्ड्स में अमूमन पाया जाता है और एक वर्ड में भी इसकी एग्जाम्पल मिलती है, जो कि हाँ जी ये एक वाहिद वर्ड है अलिफ लाम मीम जिसके अंदर ये इदगाम पाया जाता है. अलिफ लाम मीम सौद या अलिफ लाम मीम रॉ, लेकिन लाम और मीम के बीच में ये इदगाम आपको विद इन अ वर्ड मिलता है. इसके अलावा आपको कहीं और ये एग्जाम्पल नहीं मिल रही होती. ओके, इसके बाद जो सेकेंड इसका रूल है वो है इख्फा शफवी. शफवी इख्फा के बारे में जैसे हम जानते हैं कि खफी से ये वर्ड है छुपा के पढ़ना, शफवी यानी लिप्स में. तो इख्फा शफवी मीम साकिन को बोलने का एक तरीका है. ہم اخفاء شفوی اس وقت کرتے ہیں جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے, یعنی جہاں کہیں پر بھی میم ساکن کے بعد اگر لیٹر با آ جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کیسے پڑھیں گے؟ اخفا کر کے, اور اس اخفا کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا شفوی. میں نے سورت الملک کھولی ہوئی ہے, اس پہ نا آیا نمبر 12 میں ایک ایگزامپل ہے اخفا شفوی کی. ان الذین یخشون ربہم, اور اس کے بعد ہے بالغیب, یعنی ربہم میم ساکن اور میم ساکن کے بعد بالغیب با, یہ جو ہے یہ اخفا شفوی ہے. اب جیسے ہم نے اخفا کو پڑھنے کا طریقہ پہلے دیکھا, اخفا کو پڑھنے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ کو نیکسٹ لیٹر کے قریب جانا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو نیکسٹ لیٹر کیا ہے؟ نیکسٹ لیٹر ہے با. تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ نیکسٹ لیٹر با کے مخرج کے, اب میم اور با کا مخرج ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, میم کا مخرج بھی لپس ہے, با کا مخرج بھی لپس ہے, تو اب ہم با کے مخرج کے اتنا قریب جائیں گے کہ ہم آلموسٹ اس کے مخرج کو ٹچ کریں گے. ٹچ کیوں ہوتا ہے یہ بھی میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ لیٹر کے مخرج کو ٹچ کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی ساؤنڈ ایگزیکٹ میم کی طرح نہ ہو. ربہم بل یوں نہیں ہونی چاہیے, ربہم ہم بالغیبی, یعنی آپ کے لپس جوائن ہوں گے لیکن آپ کی ساؤنڈ اخفا کی طرف ہوگی. ہم یعنی اصل میں نا ہم پورا میم بولتے ہوئے نا ساؤنڈ ساری ناک میں چلی جاتی ہے, لپس جوائن ہوتے ہیں اور ساری ساؤنڈ ناک میں جاتی ہے, جبکہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اخفا کرتے ہوئے ناک کی ساؤنڈ ضرور ہوتی ہے لیکن ساؤنڈ اندر جانے کی بجائے لپس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے. ہم یعنی ہوں, جیسے آپ ہوں کر کے بولیں لپس کو گیپ دے کے ہوں, تو ساؤنڈ آپ کی لپس کی طرف آ رہی ہوتی ہے, اخفا میں ایسے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے اس کو ایسے بولنا ہے, جیسے ہم نے اقلاب میں بھی پڑھا تھا نا کہ ڈفرنس آف اپینین ہے, بالکل اقلاب کی طرح اخفا شفوی کے اندر بھی ڈفرنس آف اپینین ہے کہ بس اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ کو لپس میں نا لپس جوائن کرنے چاہیے لیکن آپ نے میم کی طرح نہیں بولنا, ٹھیک ہے. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ لپس میں پیپر گیپ دے, پیپر گیپ دے کے بولیں. اب اس میں پیپر گیپ دینے سے نا ساؤنڈ زیادہ نون کی طرف چلی جاتی ہے, لائک فار ایگزامپل اگر میں اس کو پیپر گیپ سے بولتی ہوں تو یہ ساؤنڈ ہوگی ربہم بالغیب ہوں, اب یہ پیپر گیپ ہے. اب پیپر گیپ سے کیا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ آپ کی نا لائک ڈسٹنکٹ نہیں ہوتا کہ کیا کا اخفا کریں یا نون کا اخفا. نون کا اخفا بھی تو یہی ہوتا ہے نا, ہوں ایسے ہی ہے. اگر میں خالی ہوں پڑھوں تو اب آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ نون ہے یا میم ہے, ہوں تو اب دیکھیں یہ ملنے لگ جاتی ہے نا ساؤنڈ. اس وجہ سے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ لپس کو جوائن کرتے ہیں مگر ساؤنڈ کو لپس پر رکھتے ہیں تاکہ اخفا کی ساؤنڈ میم کے اخفا کی ساؤنڈ کلیئر ہو سکے. اور ربہم بالغیب, ٹھیک ہے, دیکھیں اب یہ اسی آیت میں ربہم اور لہم یہ ادغام ہے, تو میں ان کو اکٹھا پڑھتی ہوں تاکہ آپ ساؤنڈ کے اندر ڈسٹنکشن کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرہ, ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ربہم بالغیب لہم مغفرہ ہم یہ بہت, ٹھیک ہے, جبکہ اس میں آپ نے لپس کو بہت دبانا نہیں ہوتا اخفا کرتے ہوئے. صحیح. پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس تھرڈ حکم آ جاتا ہے وہ ہے اظہار, اور میم ساکن میں آپ اظہار کر کے پڑھتے ہیں. جی ڈائریکشن جو ہے نا پریشر, ساؤنڈ کے پریشر کی جو ڈائریکشن ہے وہ لپس کی طرف ہوگی, لیکن لپس کو جوائن کر کے آپ نے بہت دباؤ نہیں ڈالنا. جیسے نارمل جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کے لپس ذرا تھوڑے پریس ہوتے ہیں, اتنا آپ نے دبانا نہیں ہے, یعنی آپ کے لپس بس چھوئیں ایک دوسرے کو, उसको आपने प्रेस नहीं करना, समझ आई बात? बिल्कुल, नाक की तो आवाज होगी, नेजल साउंड तो जरूर होगी ना, इख्फा है, गुन्ना तो जरूर होगा, ठीक है, नाक की आवाज होगी, लेकिन आपने लिप्स को बहुत दबने नहीं देना, होम करेंगे तो वो बहुत ज्यादा नाक में चली जाएगी, क्लियर मीम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, टच करें मगर प्रेस ना करें लिप्स को, सही। तो थर्ड रूल है इजहार शफवी, इजहार शफवी मीम साकिन के बाद अगर मीम या बा के अलावा बाकी कोई भी हर्फ आ जाता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, इजहार शफवी करके बोलते हैं, मीम का इजहार करते हैं गुन्ना के बगैर। ये बात आप जानते हैं कि इजहार में, हमने नून में भी पढ़ा था ना कि नून का इजहार करते हैं ज्यादा देर गुन्ना के बगैर, तो यहाँ पे भी मीम का इजहार करेंगे ज्यादा देर गुन्ना किए बगैर। इसमें काफी सारी एग्जांपल्स आ रही हैं सूरतुल मुल्क के अंदर इजहार शफवी की, जैसे आया नंबर 2 देखिए, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसन, ठीक है, फिर इसी तरह से आई नंबर 5 में है, वह अतदना लहुम अज़ाब सईर, 6 में है, बिरब्बिहिम अज़ाब जहन्नम, आई नंबर 8 में है, सअलहुम खज़नतुहा, फिर आगे भी है, अलम यातीकुम नज़ीर, अलम पर भी और यातीकुम पर भी, सही जी, बात समझ आ गई। तो मीम साकिन के ये 3 अहकाम है, इदगाम शफवी, इजहार शफवी एंड इख्फा शफवी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है गुन्ना की टाइमिंग से रिलेट करता है, इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स में ना, ठीक है। ये गुन्ना की टाइमिंग से ताल्लुक रखता है कि जो गुन्ना है, हमने मखारिज जब पढ़े थे तो हमने कहा था कि अल खैशूम, याद है आप सबको क्या था खैशूम? नेजल कैविटी है, बिल्कुल, मखरज है ये नेजल कैविटी जहां से गुन्ना की साउंड आती है, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि नून और मीम डबल मखरज यूज करते हैं, एक इनका फिजिकल मखरज है और एक नेजल कैविटी ये यूज करते हैं, खैशूम का मखरज यूज करते हैं, क्योंकि नून और मीम के अंदर एक ऐसी क्वालिटी पाई जाती है गुन्ना की जो कि लाजमन इनके अंदर मौजूद है, और आपको उस गुन्ना को अदा करने के लिए खैशूम से आवाज को निकालना पड़ता है, यानी आपको खैशूम की जरूरत पड़ती है। ये जो गुन्ना है ये हर जगह एक जैसा नहीं होता, बाज़ोकात ज्यादा गुन्ना करते हैं, बाज़ोकात कम गुन्ना करते हैं, नॉट क्वांटिटी, ठीक है, आई मीन सॉरी नॉट क्वालिटी क्वांटिटी, यानी जो उसका टाइम है वो आपने देखना है, उसकी टाइमिंग्स जो है वो ऊपर नीचे होती है, गुन्ना की मिकदार एक जैसी रहेगी लेकिन जो उसकी टाइमिंग्स है वो डिफरेंट जगह के ऊपर एक जैसी नहीं रहती, ठीक है। ये टाइम जो है ये ऊपर नीचे होता है, तो टाइमिंग्स के तबार से हम मरातिबुल गुन्ना, यानी टाइमिंग्स के तबार से लेवल्स ऑफ गुन्ना स्टडी करेंगे। याद रखें कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी इंशाल्लाह, क्योंकि आपने टर्म्स इसी तरह से मिलती जुलती टर्म्स इतगाम में भी पड़ी हुई हैं, तो आपने इसको बहुत क्लियर अपने माइंड में रखना है कि जो गुन्ना की टर्म्स हम पढ़े हैं ये सिर्फ टाइमिंग से रिलेट करती हैं, कितनी देर गुन्ना किया जाए। ठीक है, गुन्ना तो नाक में आवाज आएगी तो होगा, लेकिन देर कितना करना है, कितनी देर ठहरना है लेटर के ऊपर, ये लेवल्स ऑफ गुन्ना डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अखमल। अखमल जो है ये गुन्ना जी फोर लेवल्स जी मरातिबुल गुन्ना, मरातिबुल ये वर्ड मरातिब से है। मरातिब इज अ प्लूरल ऑफ द वर्ड मर्तबा, मीम रॉ ताबा और गोल हा। मर्तबा इसका प्लूरल है मरातिब, मीम रा अलिफ ताबा जी लेवल्स ऑफ गुन्ना। ठीक है, लेवल्स ऑफ गुन्ना भी कह सकते हैं इसको, मरातिबुल गुन्ना। इसमें सबसे हाईएस्ट जो लेवल है वो है गुन्ना अकमल। गुन्ना अकमल करते हुए आप सबसे ज्यादा देर ठहरते हैं, लेकिन काउंट से डिसाइड नहीं करते, यानी आप ये नहीं कहेंगे टू काउंट्स रुकेंगे या थ्री काउंट्स रुकेंगे, नहीं। क्यों? इसलिए कि ये आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है और ये स्पीड टू स्पीड वेरी करता है। ठीक है, इसलिए आप इसको काउंट्स नहीं कहेंगे। फिर काउंट्स करने का तरीका भी हर बंदे का मुख्तलिफ होता है, आपके काउंट्स मेरे काउंट्स बराबर नहीं हो सकते। हम एग्जैक्ट उसको वॉच के साथ तो सेकंड से तो नहीं कर सकते, तो जो काउंटिंग आपकी होगी वो और मेरी काउंटिंग का एक जैसा लेवल नहीं हो सकता, इस वजह से हम इसको काउंट्स नहीं करते। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यानी टू हरका रुकें या थ्री हरका रुकें, नहीं, स्पीड ऑफ रिसाइटेशन से मरा दिया कि अगर आप आहिस्ता पढ़े हैं यानी स्लो स्पीड से पढ़े हैं तो आपके गुन्ना ज्यादा देर होंगे, अगर आप तेज स्पीड से पढ़े हैं तो आपका गुन्ना खुद ही शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी स्पीड तेज हो गई है तो गुन्ना करेंगे तो सही, ठहरेंगे तो सही, लेकिन वो जरा शॉर्ट हो जाएगा फिर उसके मुकाबले में ना, तो इसलिए फिर हम इसको काउंट से नहीं करते। जो अकमल गुन्ना है इसमें हम, यानी आप ये कहें बाकी तमाम गुन्ना के मुकाबले में इसमें सबसे ज्यादा देर ठहरा जाता है, और फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से आप ये चीज अचीव कर लेते हैं। और ये कहाँ कहाँ होता है? फोर प्लेसेस पे होता है। नंबर वन नून मुशद्दद, नंबर टू मीम मुशद्दद, नंबर थ्री इधर बगुन्ना। याद रखिए बगैर गुन्ना इदगाम के अंदर गुन्ना होता ही नहीं है। सही है, इदगाम बगुन्ना नून साकिन वाले जो इदगाम थे, नून साकिन का इदगाम अगर यूमिन के साथ हो तो उसके अंदर आप अकमल गुन्ना करते हैं। नंबर फोर इदगाम शफवी। ठीक है, यानी मिसलैन सगीर वाला जो आपने इदगाम पढ़ा वो। इनमें आप क्या करते हैं? गुन्ना अकमल करते हैं। जैसे आय नंबर फोर में वर्ड आ रहा है सुम जी इल बसोर, तो यहां पर भी अकमल गुन्ना होगा। फिर इसी आयत में आगे वर्ड आ रहा है खौसी हुआ हसील, यहां पे भी अकमल गुन्ना है। फिर इसी तरह से आगे जो वर्ड है आई नंबर फाइव में ज़यन्ना, यहाँ पे भी गुन्ना अकमल होगा. फिर इसी तरह से आई नंबर सेवन में जो वर्ड है शहीकों वहिया, यहाँ पर भी गुन्ना अकमल होगा. तो इन फोर प्लेसेस के ऊपर आप गुन्ना अकमल करते हैं. फिर इसके बाद जो सेकेंड लेवल आ जाता है, जी बिल्कुल, आई नंबर सिक्स में, एक मिनट जी, जहन्नम, बिल्कुल ये भी गुन्ना अकमल है. फिर इसके बाद जो सेकेंड लेवल है वो आ जाता है गुन्ना कामिल का. गुन्ना कामिल में भी आप ठहरते हैं लेकिन गुन्ना अकमल से थोड़ा सा कम. इनका फर्क ना उस वक्त ज्यादा वाजे होता है जब ये एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हो, यानी फौरन फौरन अगर आ रहे हैं तो इनका फर्क जरा वाजे हो जाता है. अगर दूर दूर हैं तो फिर इनका फर्क इस तरह से बहुत वाजे नहीं होता, क्योंकि आप दोनों में कामिल में भी आप ठहरते हैं, आपकी आवाज को ठहराना होता है लेकिन अकमल से कम, अकमल जितना नहीं. जैसे आप यहाँ पे मैंने आया नंबर 12 में आपको दिखाया था ना, दोनों एग्जाम्पल्स आ रही हैं. तो इख्फा शफवी में गुन्ना थोड़ा सा कम, थोड़ी देर कम होता है एज कंपेयर टू इदगाम शफवी. अब यहाँ पे दोनों चीजें इकट्ठी आ रही हैं, तो अगर हम इसको देखें तो आप देखें इन्ना में अकमल हो जाएगा, रब्बहुम बिल गैब यहाँ कामिल होगा, लहुम फिर अकमल हो जाएगा, मग़फ़िरतुन व अजरुन यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे फिर अकमल हो जाएगा क्योंकि ये इदगाम है. ठीक है, तो कामिल जो है उसमें भी हम ठहरते हैं मगर अकमल से थोड़ा सा कम. कामिल कहाँ कहाँ होता है? इख्फा शफ़वी में, इख्फा हकीकी में, जो नून साकिन का इख्फा था, जैसे आया 12 ही के एंड में ना, सूरतुल मुल्क की आया नंबर 12 के एंड में, व अजरुन कबीर, ये इख्फा हकीकी है, इसके अंदर भी गुन्ना कामिल होगा. और इक्लाब में, इन तीन जगहों के ऊपर गुन्ना जो है वो कामिल होता है. ठीक है, तीन प्लेसेस के ऊपर गुन्ना कामिल होता है, इख्फा हकीकी, इख्फा शफवी एंड इक्लाब. अब इस आयत को अगर हम देखें तो मैं आपको इसको फिर पढ़ती हूँ. अब आपने ना टाइमिंग्स को नोट करना है कि जो रब्बहुम बिलगैब और अजरुन कबीर की टाइमिंग्स हैं ये बराबर भी होंगी और बाकी जितने भी इसमें गुन्ना जा रहे हैं उनसे थोड़ी सी कम भी होंगी. ठीक है, इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर. ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस इनका आ जाता है और ये फिर वाज़े तभी होता है जब ये इकट्ठे आगे पीछे आ रहे हों. ठीक है, अगर यूं आप बहुत डिस्टेंस के साथ पढ़े हैं तो फिर इनका फर्क वाज़े नहीं होता क्योंकि दोनों में ही आप ठहर रहे हैं. सही, इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है गुन्ना नाक़िस. गुन्ना नाक़िस जो है ये गुन्ना मीडियम टाइम है. मीडियम टाइम को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इतना वक्त जिसके अंदर आप नून के मखरज और खैशूम से आवाज दे सके, यानी आपकी जो आवाज है वो खैशूम में और नून के अपने ओरिजिनल मखरज से जो है वो आ जाए, यानी नून और मीम का मखरज इस्तेमाल हो जाए और खैशूम के अंदर आवाज चली जाए, इतनी देर तवस्सुत, मीडियम टाइम हम इसे कहते हैं. मीडियम टाइम चूंकि भी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको समझ नहीं आएगी बात, तो आप इसमें ये कहेंगे जिसमें आप अच्छी तरह नून को अदा कर सकें, इसको हम कहते हैं नाकस गुना. इसमें आप ठहरते नहीं हैं, बस नून को अच्छी तरह से अदा करते हैं और आगे चले जाते हैं, इसको हम कहते हैं गुना नाकस. ये गुना नाकस होता है इजहारुल हलकी में इजहार शफवी में. ठीक है, इन दो इजहार में होता है, इजहारुल हलकी और इजहारुल शफवी में गुन्ना नाकिस होता है. इसके अलावा जहां कहीं आप ना नून को साकिन करते हैं, यानी जैसे आप वर्ड के ऊपर वक्फ करे हैं और नून साकिन करे हैं, तो वहां पर भी नून या मीम साकिन करें. जैसे हम इस्तआजा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम. तो आप देखें ये जो हुआ ना, दैट्स गुन्ना नाकिस. अगर आप इसको इससे जल्दी कर देते ना तो आपका मीम वाज़े नहीं होता. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ अऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, तो अब मेरा मीम वाज़े नहीं हुआ, मैंने मीम को टाइम ही नहीं दिया. तो आपने क्या करना है, मीम को क्लियर करना है, मिनश्शैतानिर रजीम, ठीक है, मीम को वाज़े करना है. जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है. अब यहाँ पे भी रब्बिल आलमीन, ठीक है, तो ये भी गुन्ना नाकिस है. इसमें आप ठहर नहीं रहे लेकिन आपका नून और मीम अच्छी तरह से वाजे हो रहा है, ठीक है. अब ज्यादा देर आप रुकते नहीं है लेकिन आपका नून और मीम क्लियर हो जाता है, उसके अंदर क्विकनेस नहीं होती या उसकी साउंड के अंदर कमी नहीं आ रही होती. तो जहां कहीं आप नून और मीम के ऊपर ठहरते हैं, नून को साकिन करते हैं, वहां पर भी इजहार ही की तरह साउंड आती है. जैसे आप मीन हो लियबलुवकुम, इससे जल्दी करेंगे ना तो लेटर हिलने भी लग जाएगा. लियबलुवकुम अय्युकुम, नहीं वो हिलने भी लग जाएगा. खूब अयो खूब, यानी अच्छी तरह से उसको वाजे करें. इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आता है वो है गुन्ना अनकस. गुन्ना अनकस हम कहते हैं वन हरका के लिए होता है. इसको आप हरकत से डिटरमिन करते हैं क्योंकि ये मुतहर्रिक लेटर्स के अंदर होता है और मुतहर्रिक लेटर्स वन हरका के लिए पढ़े जाते हैं. गुन्ना अनकस एक हरकत तक पढ़ा जाता है और ये कहां पर होता है, जहां नून या मीम हरकत के साथ आ जाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल बियदिहिल मुल्कु अल मुल्कु, तो ये जो मुंह के अंदर गुन्ना हो रहा है दिस इज फॉर वन हरका. ये क्या है, गुन्ना अनकस. खुलकुल मौत मा, ये जो मा के अंदर गुन्ना है ये अनकस है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीम और नून ऐसे लेटर्स हैं जिन्हें गुन्ना के बगैर अदा नहीं किया जा सकता, यानी अगर आप नेजल साउंड को बंद करके मीम और नून को अदा करते हैं तो आप मीम और नून को नहीं पढ़ सकते. तो मीम और नून को पढ़ने के लिए जो गुन्ना है वो जरूरी है. ठीक है, तो नाक में आवाज जाएगी लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ वन हरका, चूंकि हरकत है मा ना या मा मी मू, तीनों हरकात के लिए, ना नी नू, तीनों हरकात के लिए, तो वन हरका इसके अंदर होगी. जी बिल्कुल, अल मु मी नू, इन तीनों के अंदर मु मी नू, इन तीनों के अंदर गुन्ना अनकस है. और आखिर वाले नून के ऊपर जब आप वक्फ कर लेंगे अलमुमिनून तो फिर उसमें नाकस हो जाएगा. दिस इज ओनली इन सेइंग लेटर, आप इसको कहें दिस इज ओनली इन सेइंग मुतहर्रिक लेटर, यानी नून और मीम जब मुतहर्रिक है तो उस वक्त जो है वो आप अनकस गुन्ना करके पढ़ते हैं. बिल्कुल, मीनल दोनों के अंदर, मी और ना दोनों के अंदर अनकस गुन्ना है. इसमें नाकस और अनकस दोनों है. जी अन ओके वर्ड अन मुमिनून में, जी बिल्कुल, जब आप मुमिनून आखिर में वक्फ करते ना तो इसमें नाकिस आ रहा है. अगर आप वक्फ नहीं करते तो फिर सारे जितने भी गुन्ना आ रहे हैं सब अनकस हैं. मुमिनूना चार गुन्ना है, मु मी नू और ना, चारों के चारों अनकस हैं। अगर आप आखिर वाले के ऊपर स्टॉप कर देते हैं, आखिर वाले नून के ऊपर वक्फ कर देते हैं, तो ये गुन्ना अनकस से नाकस बन। बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गए ये गुन्ना की रैंक्स। अब इसमें मैं जो चीज मेंशन करना चाह रही हूं वो ये कि आपने ना ये टर्म्स पहले भी पढ़ी हैं, नाकस की टर्म पहले पढ़ी है और कामिल की टर्म पहले पढ़ी है। ये दो टर्म्स आपने पहले पढ़ी है, कामिल एंड नाकस। तो अब हम इन दोनों टर्म्स को ना इन दोनों पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमने पहले देखा था इदगाम कामिल। इदगाम कामिल क्या होता है? अगर हम कामिल की बात करें इदगाम के साथ, तो इसका मतलब ये है कि पहला लेटर अपना मखरज और सफात छोड़कर नेक्स्ट लेटर में मर्ज हो गए पूरी तरह से, ठीक है। अगर हम गुन्ना कामिल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये ऐसा गुन्ना है जिसमें आप ठहरते हैं मगर अकमल से जरा सा कम, ठीक है। दोनों चीजों को अलग अलग रखें, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं जब ये टॉपिक पढ़ाती हूँ ना, स्टूडेंट्स फिर इन दोनों को मिक्स करने लग जाते हैं, उन्हें यानी दोनों के अंदर डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। तो ये आपने याद रखना है, जब हम कामिल को इदगाम के साथ लेंगे तो इसका मतलब है कि पहले लेटर की मर्जिंग कंप्लीट हो गई है, पहला लेटर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो पूरी तरह चला गया, सही। और अगर हम गुन्ना की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि गुन्ना के अंदर आपने ठहरना है मगर अकमल से जरा कम ठहरना है, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम नाकिस को देखें तो नाकिस की टर्म हमने गुन्ना के अंदर भी देखी है, लेवल्स ऑफ गुन्ना में भी नाकिस था और इदगाम की टाइप में भी नाकिस था। अब जब हम इदगाम की टाइप में नाकिस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लेटर पार्शली मर्ज हुआ है, यानी पहला जो लेटर आपने जो मर्ज करे हैं, मर्ज करने में दो लेटर्स होते हैं, पहला लेटर भी होता है फिर उसके बाद दूसरा लेटर होता है, पहला लेटर हमेशा साकिन होता है, तो जो पहला लेटर है उसने अपनी कुछ सिफात बाकी रखी हुई हैं और वो आधा आधा मर्ज हुआ है, यानी आधा पहला लेटर बोलेंगे आधा दूसरा लेटर बोलेंगे, ठीक है, जब हम इदगाम के साथ बात करते हैं। जब हम गुन्ना के साथ नाकस की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये ऐसा गुन्ना है जिसमें आप नून और मीम को अच्छी तरह से वाजे करते हैं मगर वहां ठहरते नहीं। समझ आ गई बात, ठीक है। तो इनको आपने क्लियर करना है, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी ना आयात में से तदबीक करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इन सारों की इसको पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे आयात के अंदर, ताकि अच्छी तरह से स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि आज हमने दो टॉपिक्स कर लिए, तो फिर उसके बाद हम ना आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ओके, इसमें हम देखते हैं वर्ड जी कुछ तो इसमें हमने किया है, जैसे अल मुल्कों में मैंने आपको बताया था मीम में अनकस गुन्ना है। आगे चलिए वर्ड आय नंबर 1 के एंड में जो वर्ड आ रहा है वह हुआ आला कुल्ली शैइन कदीर। यहां पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? जी बिल्कुल, इख्फा हकीकी हो रहा है और इसमें गुन्ना का कौन सा रैंक है? गुन्ना कामिल है, ठीक है, वेरी गुड, सही है। फिर इसके बाद देखिए खुलकुल मौता, इस मीम के अंदर गुन्ना का कौन सा रैंक है? अनकस, बिल्कुल सही। लियब लुवकुम, यहां पे मीम का कौन सा रूल है? लियबलुअकुम, मीम का रूल कौन सा है? जी वरना तो नाकस है। जी बिल्कुल ठीक है, इधार शफवी हो रहा है। सेम इधार शफवी गुना नाकस। अहसनु अंदनु, अनकस। आमलन आमा, अनकस बिल्कुल सही। अब अगर हम आमलन को मिला के आगे पढ़ते हैं तो क्या रूल अप्लाई होगा? इदगाम बगुन्ना, पूरा बोलिए। इदगाम बगुन्ना एक इसके टाइप रहेगी ना। एक टाइप रहती है इदगाम बगुन्ना नाकस। गुड। आमलन क्या आगे वाव है? ठीक है, आमलन क्या आगे वाव है तो इदगाम बगुन्ना नाकस करेंगे। और गुन्ना का रैंक क्या होगा? गुन्ना का रैंक क्या होगा? अकमल, सही। अब आप देखिए ना, टर्म्स इकट्ठे इकट्ठे आ रही हैं। गुन्ना बगुन्ना है, नाकस है, ये इदगाम हो गया, और गुन्ना क्या हो गया? अकमल हो गया। ठीक है, तो ये आपने मिक्स नहीं होने देना। इदगाम बगुन्ना नाकस है, यानी इदगाम है जो बगुन्ना है और नाकस है, क्योंकि 50-50% कर रहे हैं। गुन्ना को टाइम कितना देना है? अकमल, हाइएस्ट रैंक आ जाएगा। ओके आगे देखिए। समावातिन विबाको, आयत 3, समावातिन विबाको। इख्फा गुन्ना के टाइम, लेवल ऑफ गुन्ना कामिल, ठीक है, इख्फा में कामिल है। विबाकन और मा अब मिलाएं तो क्या होगा? इदगाम कामिल होगा, बिल्कुल बगुन्ना होगा, सही। और रुगुन्ना का टाइम अकमल होगा, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, इदगाम बगुन्ना कामिल एंड गुन्ना अकमल। ओके खल्क़े रहमानी मिन मिन ओके मिन और फिर तफावत, किस रूल से पढ़ेंगे? इख्फा हकीकी से पढ़ेंगे, ठीक है, इख्फा से पढ़ेंगे। मिन तफावत और गुन्ना का टाइम, नहीं नहीं कामिल होगा, ठीक है, नॉट इजहार, ता आ रहे हैं ना, तो इख्फा है और फिर गुन्ना कामिल करेंगे। ओके फिर आगे देखिए आया 4 में, कुछ वर्ड्स बीच में से मैं छोड़ रही हूँ, वो सिमिलर लग रहे हैं इसलिए। आगे देखिए सुम्मा, रैंक ऑफ वन्ना। सही, ठीक है, चलें इंशाल्लाह आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीक फिर इसको आगे इंशाल्लाह थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग के बाद हम थोड़ी ड्रिल इसको देंगे ताकि रूल्स अच्छे से जहन में बैठ जाए, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ओके बारकुम अल्लाहु फीकुम, कोई सवाल है तो जल्दी से कर लें। आमीन वयाकुम, बारकुम अल्लाहु फीकुम। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا توسر وتمم بالخير کامیابی کا سیشن اس میں ہم نے آخری سیشن میں دیکھا تھا عمدہ تشخص ذات یعنی اپنی تشخیص کرنا آپ نے ڈاکٹر کی زبان سے یہ بات سنی ہوگی مرض تشخیص کر لیا ڈائگنوز کہہ لیجئے بلکہ آپ عمدہ تشخص ذات کو اگر اپنی سمجھ کے لیے کریں تو اپنے آپ کو ڈائگنوز کرنا کیونکہ جب تک بیماری کا نہیں پتا ہوتا نا تو دوا بھی کام نہیں کرتی اور آپ کو شاید یہ پتا نہ ہو کہ ڈاکٹر دوا دینے کے پیسے نہیں لیتے وہ تو ڈسپینسر دیتے آپ کو آپ جا کے پرچی ڈسپینسر کو دیتے ہیں نا اور وہ آپ کو دوائی دے دیتے ہیں میں اکثر سوچتی تھی کہ ڈاکٹر کس بات کے پیسے لیتا ہے وہ لکھنے کے لیتا ہے لیکن وہ دوا تو آگے سے وہ دے رہا ہے تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بیماری کو پہچاننے کے پیسے لیتا ہے یا یہ جو 10-12 سال پڑھتے ہیں نا صرف اس کے بعد یہ کس قابل ہیں کہ یہ بیماریوں کی تشخیص کرے آج ہمارا بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے مثبت خود سمتی اس کی اپوزٹ ہے بے مقصدیت الجھا ہونا گم گشتہ ہم معنی لفظ کے مقصدیت سلجھا ہوا باخبر کون ہے اس پہ اور کون نہیں جو ہے وہ کیا کہتا ہے میرے پاس پوری پلاننگ موجود ہے الحمدللہ آئی ہیو مائی پلانر ود می اور جن لوگوں میں یہ چیز نہیں ہوتی نا وہ کیا کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں کوئی ہو نظر ہے جو مجھے وقت پہ یاد دلا دیا کرے اس وقت میں نے کیا کرنا ہے مجھ سے کسی نے کہا یہ بات کام کرنے والے ساتھیوں میں سے کوئی ایسا نہیں کہ فون پہ گیجٹ کے جو مجھے منٹ منٹ بھر بتاتا رہے اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو میں نے کہا ہے وہ اس میں نہیں ہے وہ ادھر ہے آپ اپنے برین میں لگائیں آپ کے اس کام بہت سارے ہوتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا میں نے کرنا کیا پرائیورٹائز کرنا تو اس میں ہم بہت ساری چیزیں دیکھیں گے ہم ہی اٹھاتے ہیں طوفان انقلاب حیات ہم ہی سفینہ تعمیر کو سنبھالتے ہیں کیا مطلب ہے کہ زندگی کے اس سفر میں اگر جو کر رہے ہیں نا وہی کرتے جانا ہے نا جو سب کر رہے ہیں تو کوئی بڑا کام ہی نہیں ہے جینا ایزی ہے ویری ایزی گو ود دا فلو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی لیکن اگر آپ اس دنیا کے طوفانوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں اگینسٹ دا ٹائڈز تو پھر آپ کو خود سمتی چاہیے ہم ہی سفینہ تعمیر کو سنبھالتے ہیں یعنی تعمیر کی کشتیاں اگر ہم نے نہیں سنبھالنی تو پھر کس نے سنبھالنی ہے کیا مطلب سمجھ آئی اس بات سے مثلا آپ دیکھیے میں اس کو بہت سمپل سی مثال سے دیتی ہوں آپ کو ڈرائیونگ کرنی آتی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے آپ اس نعمت کو کیسے فائدہ اٹھاتی ہیں گھر سے نکلتی ہیں اور کہیں جانے لگتی ہیں کیا کرتی ہیں پہلے سب سے سمت ڈھونڈتی ہیں نا جانا کا ہے منزل اور منزل کے بعد سمت دونوں میں فرق ہے لکھیے گا خود سمتی اور منزل میں بہت بڑا فرق ہے جدھر ہماری منزل ہوتی ہے نا ہماری سمت ادھر ہی ہوتی ہے اگر آپ جیوگرافی سے دیکھیں تو 4 ڈفرینٹ سمتیں ہیں نا مشرق مغرب شمال جنوب نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ آپ کو یہاں سے اسکول سے نکل کر اگر ایئرپورٹ جانا ہے تو آپ میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ کس رخ پہ مڑیں گے یہاں سے نکلے پارکنگ لاٹ سے جب باہر مین روڈ پہ آئیں گے تب ادھر جائیں گے کہ ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے نا جب آپ ادھر سے گاڑی میں بیٹھے تب ادھر جائیں گے یہ ہے آپ کی سمت کیونکہ آپ کو پتا تھا آپ نے ایئرپورٹ جانا تھا اس لیے آپ کی سمت درست تھی بہت سارے لوگوں کی ناکامی کی وجہ کیا ہوتی ہے جانا وہ چاہتے ہیں ایئرپورٹ پہ اور وہ رخ لے لیتے ہیں گرین لینڈ کا ان کی منزل نارتھ سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی اور وہ ساؤتھ کا رخ لیتے ہیں میں یہ بات کہہ رہی ہوں نا تو میں اس کو بڑے شعور سے کہوں گی बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं कि हम जन्नत की रोड पे निकल रहे हैं, या चलिए आपकी क्लास को खुश कर देते हैं, वो सोचते हैं कि हम सबीलुल खुदा पे हैं, लेकिन वो उतर कर सबीलुल गई में पहुंच चुके होते हैं। चाहते वो हिदायत तक पहुंचना है, लेकिन सिम्मत उनकी गुमराहियों वाली होती है, फोकस्ड नहीं होते। तो कामयाब लोग जो 100 में से कोई एक ही होता है, बल्कि अगर मैं हदीस सामने रख दूं ना तो 1000 होते हैं। या वो हदीस कोट जरूर कीजिए, आदम अलैहि सलाम तो जब अल्लाह ताला ने पैदा किया, फिर जो अल्लाह ताला का क्रिएशन प्लान था वो हो गया ना, तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को उनकी आने वाली सारी औलादें दिखाई, और अल्लाह ताला ने कहा कि जन्नतियों और जहन्नमियों को अलग करो। तो आदम अलैहि सलाम ने कहा कैसे, कौन कितने, कौन जन्नत में कौन जहन्नम है? तो एक रफ फिगर बता दिया, हर 1000 में से एक जन्नत और 999 जहन्नम में जाएंगे। ये बात सुनकर आदम अलैहि सलाम घबरा गए थे। हसबुनल्लाह व नियमल वकील व नियमल मौला व नियमन नसीर। अल्लाह ताला के नबी ने जब ये बात सुनाई तो सहाबा घबरा गए, कौन जाएगा जन्नत में? आप जरा सोचे, मैं अपने ऊपर लेती हूँ इसको अक्सर ही, आपको भी ये कहूंगी, मैं कितने लोगों को जानती हूँ दुनिया में, जिसको भी मैं जानती हूँ, सबसे पहले मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, उनके बाप, फिर क्लोज फैमिली, दूर की फैमिली, फिर मैं बचपन में जहां रही, फिर मैं उसके बाद से अब तक जहां जहां गई। स्टूडेंट गिन के देख लीजिए, चलिए मान लेते हैं 1000 बंदे का नाम आ गया लिस्ट पे, और ये पता तब चलता है जब हम शादियों की दावतें देते हैं लोगों को, 500 बंदे आएंगे। मैं कहती हूँ ये 500 उस दिन कहाँ थे जब आपने अपने घर दर्श रखाया था? नहीं, उस दिन अवेलेबल नहीं थे। अभी भी एक सिस्टर है, वो कह रही मैंने रबी लेवल में दर्श करना है, बहुत बड़ा होटल लेके ये करना है वो करना है। मैंने कहा अल्लाह की बंदी तुम्हारे पैसे जाया होंगे, कई 1000 का तुम हॉल लोगी वो है। मैं कहा तुम ऐसा करो, साथ अपने बेटे के वलीमे का नाम लिख दो, तो फिर वो भी पूछेंगे जिनको तुम नहीं बुलाओगी। क्योंकि हमारे लोग क्या करते हैं, मुझे नहीं बुलाया, मैं खाला थी और तुमने ये नहीं किया, उस वक्त वो मोहब्बतें, यानी एक शादी करके देखिए आपको मेरे ये सारे जुमले समझ आ जाएंगे। जिन्होंने किए उनको खूब अच्छी तरह पता है, शादी के 4 माह तक सिर्फ वो लोगों के आगे हाथ जोड़े थे, अच्छा इस शादी पे माफ कर दें, अगली पे आपको हम 4 दिन पहले बुला लेंगे। हाँ जी हमें भूल गए, कोई कहता लोग मुझे कोई सुनाते हैं लोग अपनी कहानियां, तो मैं खुश हो रही होती हूँ कि कभी ये दर्स के लिए भी तो मैं आ रहा हूँ। हाँ जी हमें तो मजे से टरखा दिया, यानी हमें सिर्फ निकाह में बुला लिया, तो रात की मुझे वो रिसेप्शन की लंबी सी दावत थी उसमें नहीं बुलाया ना। मैंने कहा और उछले, आप सोचें लोग खुश होंगे, खुश नहीं होते, 2 खाने खिला के भी आप खुश नहीं कर सके, तो बेहतर नहीं है कि आप उनको कोई रूह का खाना खिला दें? लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो कामयाबियों के रास्ते पे नहीं है। तो 100 में से एक है, अब आप सोचे जिन 1000 को आप जानती हो उनमें से सिर्फ एक ने जन्नत में जाना है, तो मैं तो सोच लूंगी इमाम काबा को मैं जानती हूँ, मेरा ख्याल है वही चले जाएंगे, क्योंकि उनके पीछे लाखों करोड़ों लोग हर साल नमाज पढ़ते हैं। अपेरेंटली मिसाल दे रही हूँ, किसी आलिम का सोच लूंगी तो मैं तो नहीं उसमें, बस इससे इमेजिन करें। जैसे आखिरत की कामयाबी में 1000 में से एक है ना, तो आप इमेजिन करें दुनिया में 100 में से एक बंदा। और ये भी एक हदीस मुझे साथ ही अल्लाह याद दिलाता है, हालांकि बुक आपको मैं पर्सनालिटी ग्रूमिंग की पढ़ाती हूँ, लेकिन कुरान सुनना से शगफ होने का ये फायदा होता है कि हर बात पे हदीस याद आती है। नबी सल्लम ने फरमाया कि ऊंटों में से हर 100 ऊंट में से एक ही काम का होता है, मतलब ये कि 100 लोग दुनिया में जो इंसान है ना उनमें बस एक बंदा काम का होता है, बेकार है बाकी। और आप जाके तो देखिए बेकारियात में खोए हुए ज्यादा लोग आपको दिखेंगे कारामत लोगों से। ये क्या इनके सर पे घुसींग होते हैं? अब आप अपने आप से पूछिए वजह, चले हम 100 पे ही किफायत करते हैं, हर 100 में से एक ने कामयाब होना है, तो बकिया लोगों से क्या खास चीज इनके अंदर होती है? तो लिख ले एक लफ्ज, मुस्बत खुद सिमति। ये अपनी सिम्मत को देखकर चल रहे होते हैं। ये क्या होती है भाई मुस्बत खुद सिम्मती का? आसान सा तर्जमा आपको बता दूं, जिंदगी का एक जामे मंसूबा। मैंने अपनी जिंदगी में क्या करना है? कामयाब लोग अपनी जिंदगी का पूरा जामे मंसूबा रखते हैं, वो जानते हैं कि इन्हें क्या करना है, आज वो क्या कर रहे हैं, कल इनको क्या करना है, परसों क्या करेंगे। इनके पास सिमत भी होती है, इन्हें पता होता है वो कहां जा रहे हैं। और देखिए सिमत के साथ एक दूसरी चीज भी आपके मंजिल पे पहुंचने के रास्ते में बहुत अहम है, स्पीड। यानी यहां से एयरपोर्ट जाना है, सिमत तो ठीक ली अल्हम्दुलिल्लाह, हम यहां से निकले तो राइट टर्न ले लिया हमने E6 पे। अब कौन कब पहुंचेगा डिपेंड अपॉन द स्पीड। रोड पे तो आपकी कोई स्पीड इन्होंने लिख ही दी है ना कितनी ही रखनी है ना। मसलन आपको अगर कम से कम भी रखनी है तो 60 ही रखनी है, और ज्यादा का शौक है बहुत तो फिर 100 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन जिंदगी में बहुत सारे लोगों की सिमत दुरुस्त होती है, स्पीड बहुत ही स्लो होती है, और जितनी आपकी स्पीड स्लो होगी ना उतने दूसरे आपसे आगे चले जाएंगे। आप गाड़ी चला के देखें, E6 पे जाएं, मिनिमम स्पीड पे चलाएं, 60 पे मिसाल है, सब पीछे वाली गाड़ी इंडिकेटर दे के आपसे आगे निकल जाएंगी। मैंने जब अपने वाले से ड्राइविंग सीखनी शुरू की ना, तो उन्होंने मुझे ये उसूल समझाया था कि देखो अगर स्लो चलोगी ना तो सब तुमसे आगे निकल जाएंगे। लोग बदर फील करते हैं ना आपके आगे टुन 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 जा रहा है, और अगर तुम तेज चलोगी, तेज से मुराद मुनासिब तेज, तो कोई तुम्हारे आगे नहीं आएगा, वो कहेंगे इसको जाने दे, इसको जल्दी है ना ये आगे जाए। जिंदगी का भी यही सफर, और मैंने इन चीजों से बहुत सीखा है। हम अपनी जिंदगी में या तो स्पीड के कम होने की वजह से मंजिल पे नहीं पहुंच पाते, और वक्त चला गया, फ्लाइट मिस हो गई, रुख तो ठीक था एयरपोर्ट जाने का, स्पीड कम थी, और जब बहुत ओवर स्पीडिंग करते हैं तो एक्सीडेंट ले लेते हैं, फिर भी नहीं जा पाते। देखे होंगे रोड्स पे साइन लिखे होते हैं, 1-2 मिनट की जल्दी आपकी जान ले सकती है। कितनी कुछ स्पीड तेज करेंगे, 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले कि आपकी डेथ फ्लाइट ना आ चुकी हो, राइट? तो ये जिंदगी बहुत आर्ट है, सीखना चाहिए कैसे जीना है। खुद सिमती के मकासित हो सामने, वो पहले अपना एक मकसद तय करते हैं, फिर इसे हासिल करने की कोशिश करते हैं, और फिर मुसलसल कोशिश। इस जुमले में भी पॉज दीजिए मेरे, पहले मकसद, एरो लगा ले, ये जुमले ना लिखा करें, इनको आप वर्बल नोट्स लिया करें, जैसे शॉर्ट हैंड नोट्स नहीं होते, एरो लगाया मकसद, फिर उसके बाद सेकंड एरो लगाइए सही, कोशिश स्ट्रगल, लेकिन कितनी मुसलसल सही। शुरू में मैं यहां से स्पीड बड़ी अच्छी रखवाऊं एयरपोर्ट जाने की, आगे जाकर मैं लॉन्च कुक से स्पीड कम करवा दूं, या मैं ट्रैफिक में फंस जाऊं, तो फिर मेरी कोशिश कम हो गई ना, तो मुसलसल कंटिन्यू। या मैं कहीं गाड़ी खड़ी करके चाय पीने लग जाऊं, फिर भी नहीं पहुंचूंगी, कंटिन्यू स्ट्रगल। हिदायत का रास्ता यकीन करें जो खुशी देता है ना बंदे को, ये उसको पता होता है जो उस पर चल रहा है, जैसे आपको पता चलता होगा आप जब इन रस्तों पर चलते हैं। सबसे कठिन और मुश्किल चीज हिदायत के रास्ते की या कामयाबी की क्या है? इसमें छुट्टी नहीं है। कभी हमारे दिल ने छुट्टी ली? मैं अक्सर अपने दिल से पूछती हूँ, लोग कहते हैं ना एक दिन तो छुट्टी चाहिए ना, ये भी आपके ऊपर वेस्ट का रंग है, वल्लाही वैसे मेरा ये कि मौजूदा दौर का रंग है। वीकेंड पे छुट्टी, वीकडेज पे छुट्टी, बच्चों को छुट्टी, बड़ों को छुट्टी, कभी तो ब्रेक चाहिए। हमारी साइंस टीचर के मुझे हाथ के एक्शन याद आते हैं, उन्होंने बताया कि बॉडी का हर उस जो है ना हमारी जिस्म का, वो कहीं ना कहीं हाइबरनेट हो जाता है। हाइबरनेट समझते हैं? जैसे आप ये फोन, अभी लैपटॉप को मैं यूं बंद कर दूंगी ना तो ये स्लीप पे चला जाएगा। जैसे आपको कहते हैं कि जिगर जो ये रात 11 बजे से 3 बजे के बीच में काम नहीं करता, हाइबरनेशन पे चला गया, डोंट डिस्टर्ब मी, जैसे आप किचन का दरवाजा बंद कर दें कि इस वक्त मैं किचन नहीं खोला। तो जब ये सब कुछ हुआ ना, तो फिर उन्होंने हमसे सवाल पूछा कि दिल कब रेस्ट करता है। इन्होंने एक फितरत का असूल बता दिया, हर चीज रेस्ट करती है, क्योंकि ला ताखुज़ु सिना तुम वला नौम, सिर्फ एक हस्ती है जिसको नींद और ऊंघ नहीं आती और वो अल्लाह की है, बाकी को है। तो कहने लगी कि दिल कब आराम करता है, अब आप लोग बताएं। मरने के बाद जब हिदायत पे होता है तो धड़कना छोड़ देता है,
नहीं
जी, और कोई पीछे से। अब देखिए उनके एक्शन, हमने भी यही कुछ कहा था जो आप कुछ कह रहे हैं, तो हमने कहा वाकई सोते हैं नहीं सोते में भी दिल चलता है, जब बेहोश कर दे नहीं, इवन आपने ओपन हार्ट सर्जरी देखी तो दिल धड़क रहा होता है, कुट कुट कर रहा होता है, और वो डॉक्टर उसके साथ खेल रहे होते हैं। तो आप उन्होंने क्या कहा, देखिए दिल यू कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, हर एक धड़कन के बाद जो उसकी रिलैक्सेशन है ना, ये दिल का आराम है। अल्लाह हमें ऐसा बना दे। ये है जोहद मुसलसल। इस सफर में थोड़े लोग रहेंगे लेकिन वो ही जीतेंगे। छुट्टियों के और आराम के तलबगार लोगों को कभी आराम नहीं मिलता। नरम गद्दों पे वो बिस्तर पे नींद नहीं आएगी आपको, जो मकसद की तरफ भाग के रास्ते में एक हल्की सी ओंघ ले लें तो आराम ले लें, जी आराम है। चलते चलते जिंदगी का सफर ऐसे ही कटेगा और एक लंबी नींद आएगी। हदीस में आता है कि मोमिन के पास कब्र में फरिश्ते आते हैं और उसको तसलियां देते हैं, नम सो जाओ, स्लीप कनाओ मतिल रूस, जैसे दुल्हन सोती है उसको कोई नहीं जगाता, कहते हैं इसको आराम करने दो, सिर्फ उसका कोई प्यारा ही उसको जगाएगा। इसी तरह दुनिया में काम सही है मुसलसल। फर्स्ट स्टेप लिखिए, खुद को अपनी हिदायत में लेकर अपने मकसद की सिमत बढ़ना है आपने। गुल बनाए, मैं हिदायत चाहती हूं, आज बार बार सबीलुल हुदा का लफ्ज आ रहा है ना जिन में। अब अपने मकसद की सीमत बढ़ना है, इधर कितने बजे पहुंचना था, 10 बजे, कितने दिन आना है हफ्ते में, 2 दिन, कितने घंटे गुजारने, 2.5, बीच में ब्रेक, सब कुछ मिल मिला के आधा घंटा रिलैक्सेशन, बीच में नमाज आ जाएगी, ये आपका गोल है। अब इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये नहीं कि 10 की बजाय 10 या आप कह दें 2.5 की बजाय 2.25। दिल दिमाग कहेगा बस ये 15 मिनट छोड़ दो, जुबी उठो जल्दी करो, आज आगे एक दर्स रखा हुआ है, भागो भागो। ये 15 मिनट इधर से बचेंगे वो कहीं आगे फंस जाएंगे। ये ईमान की बातें हैं, वल्लाही ईमान की बातें हैं। सिर्फ अपनी जिंदगी में ये रखिए कि मकसद की हिम्मत बढ़ना है। बस आप यहां से पाकिस्तान जाएंगे और फ्लाइट 7 आवर 50 मिनट की है, तो आप 7 आवर 20 मिनट पे जहाज से नहीं निकल सकते। इसी तरह जिंदगी में कामयाबियों के लिए वक्त से पहले रास्ते से उतर जाना। वो कहते हैं ना कि 2 गाम मंजिल रही, और कि हम मंजिल अभी हमसे बस 2 कदम रह गई थी तो हम थक गए। बहुत सारे लोग क्यामत के दिन सिर्फ इस बात पे हसरत कर रहे होंगे, काश थोड़ा सा और सब्र कर लेते। निहारी बना रहे हैं आप, सुबह से चढ़ाई भी है, बस थक के छोड़े, बंद करो चूल्हा, वो पतला शोरबा और हड्डियों बड़ा गोश्त सख्त देख के सब कहेंगे अच्छी है, ठीक है, इट्स ओके। 15 मिनट इसको और तेज आंच पे पकाते, इसका पानी भी सूख जाता है, इसके गोश्त में जो कसर थी और जो इसमें लेस और जोश बनना था वो आप इंजॉय करते। इन नसा यकुम लशत्ता। देखिए मुझे इसी से इतना खौफ आता है, मैं कहती अल्लाह क्यामत के दिन उन महरूम लोगों में ना करना कि जो सिर्फ एक नंबर के फर्क से दूसरी पोजीशन पे आ गया, जो एक नंबर के फर्क से सिर्फ फेल हो गया। पूछिए तो सही क्या हसरत हो गया आधा नंबर किसी का दूसरी जगह हो। ऐसा कई दफा मैं, मुझे अपना बचपन का कई चीजें याद आती हैं, सिर्फ एक आधा नंबर होता था और एक से दूसरी जगह पे बंदा चला जाता है। तो अपने मकसद की तरफ बढ़ना है और आप अपने आप को चेक करें। आप कह लीजिए कि कामयाबी है क्या जिस पे हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं। कामयाबी है मकसद के हसूल का दूसरा नाम। लिखिए मैं कामयाब होना चाहती हूं, यानी मसला आप देखें ना, एक डॉक्टर की कामयाबी और है, इंजीनियर की और है, मासी की और है, किचन में खड़ी खातून की कामयाबी कुछ और है, स्कूल जाते हुए बच्चे की, और सबकी फर्क है ना। आप वेस्ट में जाएं कामयाब और हैं, ईस्ट में और हैं, दीन में और हैं, दुनिया में, तो आप इसको एक नाम दे दें, मकसद का हसूल मेरी कामयाबी है। मैंने सोचा मैंने अपना किचन साफ करना है और मैंने खाना शाम के लिए बनाना है और आपने 11 से पहले बना लिया, दैट मीन यू आर सक्सेसफुल। आपने सोचा कि मैंने वीकेंड पे पूरे अगले वीक के कपड़े धो के सफाई करके प्लान करके चीजों को मैनेज करना कर लिया, आप कामयाब है। कोई कामयाबी कोई केटू पहाड़ पे चढ़ने का नाम नहीं है या माउंट एवरेस्ट को सर करने का नाम नहीं है। कामयाबी है कि जो काम करने बैठे वो कर लिया। चलिए खुद से पूछें, क्या अमूमन मैं अपने मकसद को हासिल कर लेती हूं? बस मेरा घर साफ रहता है जब मेरा मकसद होता है घर साफ करने का। एक सिस्टर थी तो वो अपनी बात कर रही थी बेतकल्फी में, मेरी माँ मुझे कहती तेरा घर बड़ा गंदा होता है, तेरी बहन का घर बड़ा साफ होता है। यानी माँ बेटियों को, वैसे बच्चियों के घर साफ भी हो तो माँ को साफ नहीं नजर आते, लेकिन माँ ने उसको कह दिया था। कहती अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़की ने जो ये कहानी सुना थी उसने किसी जगह कुरान शुरू कर दिया। तो जब कुरान शुरू किया ना तो फिर उसको क्या आता था, मुझे टाइम नहीं मिलता। तो जिसने उसकी पहली बात सुनी थी उसने कहा ये बताइए सिस्टर कुरान शुरू करने से पहले क्या था हालात? तो हंस के कहती है साफ तो पहले भी कोई नहीं था होता। तो मैं आज भी जानती हूँ जिनके आज भी कुरान के साथ ताल्लुक है उनके घर चमक रहे होते हैं। समझ आए ना, ये सिर्फ एक रौला होता है, थके थके थके, काम काम काम, लुक बिजी डू नथिंग। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप, सच्ची बात है, अब भी नहीं है कल भी नहीं थे, और आप नहीं है ना तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हर बंदे ने अपनी साख्त में कोई ना कोई मकसद रखा होता है। इवन आपका छोटा सा बच्चा जो खेल रहा ना उसका मकसद पता क्या, ये गाड़ी मैंने तोड़नी है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ मैं इसको देखूं, मैंने ये सारे खिलौने बखेरने, जिसमें बखेर तक था, हा 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 अल्हम्दुलिल्लाह मकसद में कामयाब हो गए। बगैर मुकम्मल प्रोग्राम के, बिला किसी मंजिल के तायुन के अब किधर जाएंगे? अब ये भी जुमला सवाल लिखे जरा। प्रोग्राम कोई नहीं था आज सुबह घर से निकलते हुए, मंजिल कोई है नहीं थी, गाड़ी में बैठ के अब जाएंगे किधर? चले जरा ऐसी बाहर रोड पे देखती हूँ। इतने में एक दोस्त का फोन आ गया, किधर हो? कहीं नहीं, बस इधर ही बाहर घूम रही थी, आओ जरा चलती हो आईकिया चलते हैं। चलो जी आती हूँ, नो प्रॉब्लम। आप तो शुक्र करेंगे क्योंकि आपको जाना था बाहर पर पता नहीं किधर जाना है, आप उनकी खिदमत में किया में पहुंच गए। वहां अभी पहुंच के अभी उसको ड्रॉप करें तो किसी और का फोन आ गया, 2 मिनट के लिए आ सकती हूँ, जल्दी से आ जाओ मुझे बहुत इमरजेंसी है तुम्हारी हेल्प चाहिए। अच्छा आप सिस्टर अंदर जाए मैं उधर जाती हूँ, मैं वापसी भी आपको लेंगे। अब सारा दिन गाड़ी में इधर उधर घूमेंगे पर आपको पता नहीं हमने जाना किधर है। जिनके अपने कोई मकसद नहीं होते ना, जिनके अपनी कोई सिमत ठीक नहीं होती, सारा दिन लोगों के इशारों पे नाचते हैं। जिसको वो आप कह सकते हैं ना, जिस लाया गली ओदे नाल उठ चली, सुना वे, जिसने बातों में लगाया उसके साथ चल पड़े, जिधर जाना चलते हैं। ये साथ की जिंदगी में बहुत मुश्किल होता है। तो करें क्या? नंबर एक, सबसे पहले तय करें जाना किधर है। फर्स्ट थिंग, वेरी बिगिनिंग स्टेप। दूसरा अहम फिर आपका काम क्या है, रास्ता चुने। हम फिगर आउट करते हैं ना जब जाते हैं कहीं, तो फिर हम गाड़ी में बैठ कर नेविगेटर में डालते हैं, अच्छा कौन सा लें, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, हैवी ट्रैफिक, फलां फलां फलां। और बाज दफा हाईवे लेते हैं, बाज दफा हम छोटे रोड लेते हैं, बाज दफा यहां तो नहीं है लेकिन अमेरिका में बहुत मारूफ है टोलवेज। आप एक रास्ता जो 45 मिनट में तय करते हैं ना, वो 15 से 20 मिनट में आते हैं। पर मसला क्या है कि वहां पहुंचने में आपके 10 12 या 5 10 डॉलर के टोल लग जाएंगे, टोल वे होता है उसमें, यहां भी होते होंगे। तो रास्ता चुने। तीसरा स्टेप क्या है, चलने के तरीके सोचे, तरीका ये भी बताया मैंने, और फिर चल पड़े, तब ही आपको मंजिल मिलेगी। जब तक जहन में ये वाजे ना हो कि आपको जाना कहां है, या जहन में मंजिल का तायन दुरुस्त ना हो, देखिए तायन होना और चीज है और दुरुस्त होना और चीज है, तो आदमी भटकता ही रहेगा, गाय की तरह इधर उधर मुंह मारता फिरता है, कभी इधर कभी उधर। तो जिंदगी में सिमत बड़ी जरूरी है, इसका तयन करें। ये जो किबले की तायन है ना, ये भी असल में हमें डायरेक्ट करती है। सच बताएं कि हम खाना कहां को सजदा करते हैं, नहीं, सयकुलु सुफहाउ मा वल्लाहु मन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, है तो आयत किबले के तायन में लेकिन ये जिंदगी के तायन भी है। आप जब कुरान की हिदायत पे आते हैं और कामयाब होना चाहते हैं तो लोग कहते हैं ये किधर चल पड़े, कल तक तो हमारे साथ थे, हम ही जैसे थे, आप ये किन चीजों में आ गए। तो कामयाब इंसान के जहन में इसके मकासिद वाजे भी होते हैं और साफ होते हैं। नाकाम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, वॉन्डर ब्लाइंडली। फिर मैं जैसे बनी स्टाइल याद आ गई, क्योंकि सूरत बकरा में आजकल हम ये पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा होता है वही सारा हफ्ता जहन में रहता है। इधर से उधर भटकते थे वो, जिनके सामने जिंदगी का कोई नस्ब लैन नहीं होता, जिंदा रहते हुए भी मर जाते हैं, और इनकी तबई उम्र भी कम होती है। ये क्या मैंने कह दिया, तबई उम्र यानी फिजिकल एज, छोटी उम्र हो जाती है मकसद ना हो। बिल्कुल, मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ, अल्लाह ने तो उतनी लिखी हुई थी लेकिन उनकी थोड़ी लिखी होती है। वजह क्या, मर्चों पे दिल चाह मर्चें खा ली, आइसक्रीम खाई तो कॉफी पे मूड आया तो ठंडे के बाद गर्म कॉफी पी ली, कॉफी पी ली दिल चाह अब कुकीज खा ली, कुकीज खा ली फिर चॉकलेट खा ली, फिर चॉकलेट के बाद अब बहुत ही जरा गर्मी सर्दी लगी तो जाके ठंडे आम खाने शुरू हो गए। यानी तबई उम्र फोकस्ड लोग जो नहीं होते उनकी कम क्यों होती है, कि वो परहेज नहीं करते, उनको हर मजा लेना होता है, टेस्ट। मकसद का हसूल ही वो कुव्वत है जिसकी बिना पर इंसान हर रुकावट हर मसले से किसी न किसी तरह गुजर जाता है। मैं पूरी यकीन से कह सकती हूं आप में से जितने भी लोग यहां बैठे मेरी बात सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे ना, आप सब मुख्तलिफ रुकावटों में से गुजर के यहां आए हैं। आज आपके सामने कई बड़े चैलेंजेस थे, मसले भी होंगे, रुकावटें भी होंगी, लेकिन आप की ये मकसद के हसूल ने आपको कुव्वत दी। ऐसे ही आप इधर आते, आप कहते कुछ मिलना ही नहीं, क्लास तो होती नहीं वक्त पे शुरू, तफसीर तो पता नहीं हो ना हो, ये तो हो ना हो, तो आपको ये कुव्वत ना मिलती। क्योंकि आपको पता है कि आपका एक एक मिनट इस्तेमाल होता है, तो आपने कहा जो मर्जी कर लो, मैंने जाना है, जाना है तो जाना है, नहीं जाना तो भी जाना है, जो भी आप चाहें, राइट। तो जहां जहां जिंदगी है वहां वहां उम्मीद है, और जहां जहां उम्मीद है वहां वहां ख्वाब है, और ख्वाब बार बार मंजिल या मकसद का रूप धारते हैं। मैंने चंद बातें बड़ी खूबसूरत पढ़ी, उसमें एक बात ये थी कि हम ख्वाब में सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जिनको हम जानते हैं, अनजाने बंदे को आप कभी ख्वाब में नहीं देखेंगे, क्योंकि वह दिन के अधूरे मनसूबे होते हैं ना। फिर दोहरा देती हूं, जहां जिंदगी, अब एरो डाल लें, जहां जहां जिंदगी डैश वहां वहां उम्मीद, जहां जहां उम्मीद एक और एरो डालिए वहां वहां ख्वाब, और ख्वाब बार बार मंजिल या मकसद का रूप धारते हैं, और फिर ये मकासिद एक काबिले अमल मनसूबा बन जाते हैं। चलिए थोड़ा सेकंड पे अपने आप से कुछ पूछिए, आपने अपने लिए जिंदगी में कौन सा मकसद चुना हुआ है, खुद से पूछिए, जवाब दें, खुद को लिखें। आपको तो बहुत सारों की मंजिल बस इतनी होती है कि आज टीवी में जो ड्रामा आना है वो मैंने नहीं छोड़ना, हर नई खबर सुनना कुछ लोगों की मंजिल है, सारा दिन टीवी चलता है बुजुर्गों के घरों में। खैर से पहले जवान टीवी ज्यादा देखते थे, बुजुर्ग देखते हैं, क्योंकि जवानों ने अपने हाथों में जो रख लिया अपने टीवी, अब उनको वो बड़े से ढोल की क्या जरूरत है जो सबको नजर आता है। लेकिन बहरहाल आज के दौर का आपको पता है इशू कि बुजुर्ग जो है ना, बड़े जिसको आज के दौर में दादा दादी नाना नानी या सास ससुर के, वो ज्यादा टीवी देखते हैं जवानों से। इज इट ट्रू? बस मकसद ही है, कुछ का मकसद सिर्फ खेलों में मगन रहना है। आज किधर मैच है, आज किधर जाएंगे, आज क्या होगा, और दूसरों को कमाते और ऐश करते देखते रहें और कुड़ते रहें। कुछ लोगों का मकसद कुड़ना है, तनकीद करना। हम जो कुछ अपने बारे में सोचते हैं ना, वही बन जाते हैं। ये तो मैंने आपको पीछे भी जुमला नोट कराया था, हम वही होते हैं जो हम सोचते हैं। आज मैं वही हूं जो मैंने सोचा, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचा अल्लाह ने वही दिया। ऐसे लगता है तकदीर का कलम हाथ में पकड़ा दिया, जाओ लिखते जाओ। वल्लाह ही ये एक ऐसी मंजिल होती है इंसान को जो मिल जाती है तौहीद पे यकीन आने के बाद, कि खुद ही को कर बुलंद इतना। ये खुद ही जो है ना, ये असल में खुदा और खुद के बीच का एक ताल्लुक होता है। जब आप अल्लाह की कुव्वतों और कुदरतों पे यकीन रखते हैं ना, मैं नहीं कहती ये शेर किस मन में कहा गया, ना मैं इसमें आपको कोई तसव्वुफ मिल जाना चाहती हूँ। सीधी सी बात है, अल्लाह वही करता है जो आप चाहते हैं। अक्सर लोग ये जुमला बोलते हैं, अच्छा देखते हैं अल्लाह जो चाहे, अगर अल्लाह ने चाह तो। मैं कहती हूँ सिस्टर्स एक्सक्यूज मी, अल्लाह वही चाहेगा जो आप करते। क्या मतलब, हमने तो आज तक ये सुना है कि वो करो जो अल्लाह चाहता है। नहीं, वो एक और रंग है, वो शरीयत है। आपकी जिंदगी के मामलों में जो आप चाहेंगी ना, वो अल्लाह चाहेगा। मसलन आप शरीयत अल्लाह की मान ले, आपकी तकदीर जिंदगी आपकी मर्जी की हो जाएगी। यकीन से शरीयत अल्लाह की माने, उसमें ना चूं चा करें। पूरा ला तलबिसुल हक बिल बातिल और तख्तुमुल हक वअंतुम तालमून, ये ना करें। ला तश्तरू बि आयाति समनन कलीला, मेरी आयतों को थोड़ी कीमत से ना बेचो। आप इस बात का यकीन दिला दें अल्लाह को, उसके बाद अल्लाह कहते हैं आपने मेरी इतनी मानी है, मुझे भी तो कुछ मौका दे, मैं आपकी क्या मानूं। हालांकि अल्लाह को ये बात ऐसे नहीं आती जैसे मैंने कही है, ये मोहब्बत का अंदाज है। लेकिन फिर अल्लाह आपकी तकदीरें आपकी मर्जी की बनाता है, हर काम आपकी पसंद से अल्लाह करता है, क्योंकि आपने अपनी जगह बना ली अल्लाह के आगे। देखिए घर का मुलाजिम है ना, शुरू में नजर आप शक से देखते हैं, ये ऐसा ये, कोई भी नया बंदा आपकी टीम में आएगा ना, आप उसको शक से देखें हमेशा, ठीक है ठीक है, इसका से है, इसका कॉज ठीक है, खूबियां कितनी ज्यादा क्यों ना हो, कोई इसकी आदत ऐसी तो नहीं जिसमें एक ही घुन लगा कीड़ा आपके सारे चावलों को खराब कर दे। जब सब करके देख लिया, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ही इज वेरी गुड मैन, फिर एक दिन वो बॉस को चलाता है, वो पूछे बॉस आज क्या करना है, आपका क्या ख्याल है क्या करना चाहिए, ओके ठीक है कर दो। आप बड़ी बड़ी कंपनीज को देखिए, उनके मैनेजर ही सारे कंपनीज चलाते हैं, वो तो साल में एक दफा चक्कर लगाते हैं वहां। वजह क्या है कि ट्रस्ट मिलता है। तो जुमला बोलूंगी, ट्रस्ट दे दें अल्लाह सुभान ताला को, अपना ट्रस्ट वर्दी होना दिखा दें, अल्लाह आपकी मर्जी पे आपको चला देगा। एक शराबी को शराब का दूसरा प्याला दरकार होता है तो अल्लाह दे देता है। सिगरेट के हर आखिरी कश के साथ स्मोकर्स अगला सिगरेट सुलगा लेते हैं। क्यों सुलगाते हैं भला, क्योंकि चेन स्मोकर है। तो सिगरेट वाले को एक और सिगरेट किसने पीने को दिया, उसके मकसद ने कि मैंने पीना है। शराबी को शराब दी, तो हम सब के पास जिंदगी में कामयाब होने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। सवाल लिखिए, क्या दुनिया में कुछ लोग नाकाम होने के लिए आए हैं, जिसमें से एक मैं भी हूं मसलन। अगर आप अपने आप को नाकाम समझते हैं तो जवाब है नहीं। सबके पास जिंदगी में कामयाब होने की तमाम तर लियाकतें होती हैं। जितनी मेहनत और जितना काम आप एक बुरी जिंदगी गुजारने में करते हैं, वो अल्लाह ही कामयाब जिंदगी के लिए इससे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। समझ गए, यानी जैसे कामयाब होना मुश्किल है ना, तो नाकाम होना भी कोई आसान नहीं है। नेकियां फैलाने में मेहनत करनी पड़ती है, तो गुना फैलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको तो एक एक फिल्म पिक्चराइज होती है ना, उस पर करोड़ों डॉलर लग जाते हैं, जान जोखों पर डालकर पिक्चराइज स्लॉट्स देते हैं। वो पहाड़ियों में छलांगे लगाते हैं, टांगे टूटने का डर होता है, वो कहते हैं नहीं नेचुरल रंग देना है, हम कूदेंगे। तो नाकाम होना भी कोई आसान नहीं है। असल बात यह है कि हम अपनी कोशिशों का रुख कहां लगाते हैं। फिर भी हम में से हजारों बिला मकसद जिंदगी गुजारते मिलेंगे, इनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं होती। नाकाम अफराद को यह पता ही नहीं होता कि इन्हें करना क्या है। ऐसे लोग दूसरों के हाथों में खिलौना बन जाते हैं। खुद से पूछें कि मैं खिलौना तो नहीं, लोगों ने मुझे टॉय तो नहीं समझा हुआ, पीपल आर प्लेइंग विद मी। फिर इसी तरह एक और मिसाल समझिए कि इंसान की जिंदगी कश्ती की तरह है, बोट। अगर इसकी सिमत दुरुस्त ना रखी जाए तो ये रास्ते से भटक कर तूफान का शिकार हो जाएगी, या किसी चट्टान से टकरा कर पाश पाश हो जाएगी, ये दो ही खतरे होते हैं समंदरों में, या डूबने का या टकराने का। जिंदगी में भी देख लीजिए, या तो आप डूबेंगे या किसी से टकरा जाएंगे। मैं सोचती हूँ अगर ये सबक हमने शादी से पहले पढ़े होते तो हमारी शादीशुदा जिंदगी का एक बड़ा खूबसूरत आगाज होता। पहले ही साल या पहले ही महीने में मियाँ सबको पता चल जाना था कि शी नोस कि हाउ शी शुड बी सक्सेसफुल। कितने ही लोग हैं जो सिर्फ दूसरों को अपने इशारों में पता करना चाहते हैं, क्योंकि अगले बंदे को पता ही नहीं कि मेरा हक कहां से शुरू होता है और मेरी जिम्मेदारी कहां खत्म होती है। तो कामयाब अफराद जिंदगी शुरू करते ही मकसद को मुतय्यन कर लेते हैं, मैं क्या हूं, मुझे आखिर में कहां पहुंचना है, क्या मैं जानता हूं कि लोग मेरे जाने के बाद मेरे बारे में क्या कहेंगे। ये उनको पहले से पता होता है, वो किसी महफिल में बैठ के हा हा ही करके लोगों को हंसा के नहीं आते, उनको पता होता है बाद में मेरी इन्हीं दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाना है, देखो कैसे ठट्ठे लगा रही थी। कामयाब लोगों को पता होता है कि वो मकासिद कितने अहम हैं जिनमें मुइन्ना मुद्दत तक का मामला होता है, यानी हर लम्हा जिंदगी का कीमती है। बहुत सारे लोग सारा दिन सोते रहते हैं, कोई कहता है कि मुर्दे भी उठ जाएं इतनी देर सो के भी, लेकिन ये नहीं उठती। एक माँ ने कहा, मगरिब से थोड़ा पहले की बात थी, असर के बाद और मगरिब के पहले, आप उठ के नाश्ता कर रही हैं मेरी बच्ची, लंच और डिनर कब करेंगी। कहती हम सब सो जाते हैं ना, फिर इनका लंच और डिनर बहनों का शुरू होता है खुसर फुसर। कुछ का मकसद सारा दिन लोगों से गपशप करना, कुछ का मकसद पता है कि कुछ की सिमत शॉपिंग, इधर शॉपिंग उधर, कुछ का खेल और कुछ का यूट्यूब के बेकार और वल्गर स्लॉट्स देखना, बेकार किताबें पढ़ना, अपना बॉक्स चैनल, बास का मकसद सिर्फ चैनल घुमाना है, देखो उधर के उधर के, अच्छा इधर अच्छा सीन है उधर अच्छा है। इन कामों में जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, अहम मकासिद को जाया करके अपनी जिंदगी लगा देते हैं। तो जिंदगी का हर लम्हा कीमती है। हमने जो बात पढ़ी है ना अभी, इसमें से आपको मुझे जो चीज अपने लिए पिक करनी है ना, जो होना था हो गया, इट्स फाइन। आपकी उम्र 20 साल है, 25 है, 30 है, जो भी है, नो प्रॉब्लम। आज से अपना प्लान बनाएं। अगर आप कल तक लॉस्ट थे, अल्लाह विल नॉट लेट यू अलोन, अगर आपने इरादा किया। प्लान नहीं था, प्लान बनाइए। प्लान्स थे, रास्ता नहीं ठीक था, रास्ता दुरुस्त कीजिए। और अगर आज तक नाकाम हुए ना, तो अपनी नाकामियों से सबक सीखें। डे टू डे प्लानिंग करें। कामयाब इंसान हर सुबह और हर शाम अपना एक प्लान बनाते हैं। वो कागज पर हर काम को अव्वलियत के दर्जे पर लिखता है। यानी देखिए, चार चीजें, वैसे ही हम नूरुल्लाह नूर में पढ़ाते हैं, टाइम मैनेजमेंट में एक पूरा टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट का। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ अर्जेंट होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होती, अर्जेंट होती हैं, कुछ अर्जेंट, और किसी कुछ में दोनों ही होता है और कोई दोनों ही नहीं होती। ये पूरी बहस है, आप उसमें सुन लें, लेकिन यहां बस इतना काफी है कि अपने कामों को प्रायोरिटाइज करें। क्या अर्जेंट है ये भी करना है, और इंपॉर्टेंट भी है तो भी करना है, और क्या अर्जेंट तो नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत है, उसको फिर इसके बाद करना है, और जो अर्जेंट है उसको फिर सब कुछ छोड़ के करना, चाहे वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। सुबह को अपनी लिस्ट के मुताबिक अमल शुरू कर दें। जो काम होता है उसको क्लिक लगाएं। आपको तो कितना मजा आता है जब वो थिंग्स टू डू में आप ऐसे क्लिक लगाते हैं, टेक वंदर तक एक सुकून होता है। आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी होगा। अचीवमेंट का एहसास बंदे को ताकत देता है, हैं? और साथ साथ जो काम नजर आते हैं ना, जहन में आते हैं, वो लिखते जाए। मैं खुद अपने साथ यही करती हूं, जहां बैठे जो बात याद आई मैं उसको कट दो जुमलों में या एक लफ्ज में या जहां भी हो मैं नोट करती हूँ। साथियों से दिन रात 24 घंटे इधर उधर लोग हैं, जिस वक्त जिस साथी से कोई बात कहनी है, चाहे अमेरिका में रहता है, कनाडा में रहता है, फ्रांस में रहता है, जिधर भी याद आता है, आप फौरन से पहले मैं उसको एक छोटे से मैसेज में लिख देती हूँ ताकि मैं ना भूल जाऊं, क्योंकि मेरी यादाश्त इतनी अच्छी नहीं कि मैं हर वक्त हर बात याद रखूं। तो नई चीजें अपनी उस लिस्ट में लिखें, आज से आप करें। अपनी फ्रिज पे एक लिस्ट बना के लगाएं, कंप्यूटर पे लगाएं, सबसे आसान तो मुझे लगता है आज के दौर में इधर लगाएं। लोग कहते हैं नहीं, हमने फोन के अंदर अपनी थिंग्स टू डू रखी हुई है, लेकिन आप देखिए अंदर वाली को खोलना पड़ता है, ये आपके आंखों के सामने रहेगी। पेपर चिपका लें, आजकल ये जैसे ट्रांसपेरेंट है तो इसके अंदर आप एक पेपर सुबह उठ के अपना पेपर उसमें चिपका लें। कई तरीके हैं आजकल तो काम करने के, वो सघन कहना चाहिए या नखरे इतने हैं कि वो करते करते काम का वक्त ही नहीं निकलता। आप शॉपिंग करने चली जाएं, देखिए आपको दूसरी चीजें मिलेंगी थिंग्स टू डू की, राइट? करें और शुरू करें, यानी कि करके फिर टाइम ही ना मिले कि वो थिंग्स टू डू ही अपडेट करते रहे और उसके साथ फूल लगाते रहे और का सितारे भी लगा ले, मोती भी लगा ले और कुछ नहीं कर सके। काम करते जाए फायदा होगा। जैसे आप शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं ना, जब शॉपिंग करने वाला लिस्ट बना के जाता है फायदा होता है कि नहीं, सच बताएं? एक तो चीज भूलती नहीं है जो काम के, पता चला सबसे अहम चीज माचिस ही भूल गए, और मैं कभी इनसे कहूँ ना मैं कोई चीज भूल गई, कहते नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं होगी, अगर इंपॉर्टेंट होती तो कभी ना भूलती, सच्ची बात है। और शॉपिंग लिस्ट बनाने का एक फायदा क्या होता है कि बेकार चीज आप लाएंगे नहीं, नहीं नहीं ये लिस्ट में नहीं, ये नहीं लानी। तो कामयाब खुशकिस्मती का ताल्लुक आपकी शॉपिंग से भी है, आपका घर सजाने से भी है, आपकी बहुत सारी चीजों के साथ है। जितना अपने आप को ऑर्गेनाइज करते जाएंगे उसको लिखें। हम सोचते हैं ना हमारे दिमाग में सब कुछ आ गया, मैंने आजमा के देखे जब लिखने बैठते ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये जुमला सुना मैं बचपन से अपने, सोचते थे बहुत कुछ है, कहो लिखो, लिखा तो कुछ भी नहीं निकला, इतनी लंबी चौड़ी बातें ही नहीं थी। तो आप लिखें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, फिर इसी तरह से आप देखिए अपने वर्क का स्लॉट्स बनाएं, हर एक घंटे का अपने पास एक प्लानर बनाएं कि 9 से 10 में क्या करना है, 10 से 11 में, 11 से 12। इसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटी बनाई हुई है, मुझे बताया हमारे बोर्ड पे भी लगी होती थी। एक फ्रिज बनाया था तो हमने ना एक इनको मैंने आइडिया दिया था, तो फ्रिज तरह की चीज बनाई तो उसमें 24 खाने बनाए थे, तो ऐसे वजह से खुल जाता है, मिसाल दी थी इनको क्लास में ये बना के लिए अगले दिनों में, तो वो खाना खोले ना 9 to 10, अगले खाने में 10 to 11, और हर खाने के अंदर मैंने ने कहा था कि कुछ खाने मरे खाली निकलेंगे क्यामत के दिन, कुछ के नीचे लिखे सोना, कुछ के अंदर खाना, कुछ में स्कूल है कॉलेज है, और कई खानों घंटों के घंटे मरे खाली निकलते, हम कुछ नहीं करते। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना ये फोकस्ड होने का और मकसद को हासिल करने का काम है। और आप अपने आप से कही कि मैंने जीतना है, मेरे पास गंवाने के लिए वक्त ही नहीं है। वाजे मनसूबे बनाएं, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मकसद हमारी जिंदगी की गाड़ी में पेट्रोल की तरह होता है, पेट्रोल गाड़ी में डला हुआ है आपकी गाड़ी चलती जाएगी। तो छोटा मकसद छोटा काम, बड़ा मकसद बड़ा काम, कैसे बढ़ाएं? अब आखिरी जुमला सिर्फ 2-3 आपके लिए रह गया, कैसे खुद हिम्मती बढ़ाएं? पहली बात है अपने मकसद को जरा चेक करें और दूसरों से डिस्कस कर लें, क्या ये एक वाकई सही मकसद है जिसके बारे में मैं अपनी जिंदगी लगा रही हूं। दूसरी बात, अभी से अपने बच्चों के मकासिद बनाएं और उनको भी सिखाएं। फिर इसी तरह अपने मकासिद में से डे टू डे आज क्या बनना है, एक साल बाद क्या करना है, 2 साल बाद क्या करना है, उसको भी लिखें। फिर इसी तरह एक महीने का प्लानर बनाएं, एक साल का प्लानर बनाएं, और फिर जिंदगी का खुद ही बन जाएगा। फिर इसी तरह जो जरूरी चीजें चाहिए ना आप अपने मकसद को हासिल करने के लिए उसको ले लें। बस आप पढ़ रही हैं तो पूरी किताबें अपने पास रखें, पेपर पेन आप जब आए तो आपके पूरे पेन चेक्ड होने चाहिए कि उनकी इंक तो नहीं एंड टाइम पे खत्म होगा। एक इसकी टिप नोट कर लें, कामयाब लोगों से रब्ता करें, उनसे मिलें जो आपके ही मैदान में आपसे आगे निकल चुके हैं कामयाब है, तो आप जरा देखें कि वो कैसे कामयाब हुए। और बहुत कम मुद्दत वाले मकासद पहले तय करें, शॉर्ट टर्म बनाएं, पहले एक दिन में क्या करना है उसको करेंगे ना आपको एनर्जी मिलेगी, फिर हफ्ते के और फिर उसके बाद लंबी मुद्दत के। और जब आपके प्लान पूरे होंगे ना तो खुद को गिफ्ट दें, शाबाश दें, अपनी तारीफ करें, अपने आप को तसल्ली दें कि मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह रखूंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कामयाब कर दे। आमीन। चलिए जज़ाकल्लाह खैर। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جی سسٹر آواز آپ لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہے الحمدللہ جی ابھی ہم نے کامیابی کے ٹاپک کے اندر جو ٹاپک تھا وہ تھا مثبت خود سمتی یعنی اپنی ڈائریکشن کو سیٹ کرنا ڈائریکشن لیس نہ ہونا رائٹ کیا چیز لرن کی آپ نے اپنے لیے جی اپنے آپ کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے کیا چیز آپ کو اپنے لیے سمجھ میں آئی کیا ہوتی ہے مثبت خود سمتی کیا ہے
کھل کے دکھنی چاہیے कि आप अपनी आदतों की गुलाम
प्लानिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है जी. सबसे पहले यानी कि अगर आप खुद सहमति को देखना चाह रहे हैं अपनी डायरेक्शंस के लिए, क्या चीज सबसे पहले इम्पोर्टेंट होगी? पहले सही डायरेक्शन चुननी और फॉर कंटिन्यूस डायरेक्शन एंड स्ट्रगल. जी यानी सबसे पहली चीज प्लानिंग तो हम उस वक्त करेंगे ना जब हमें अपनी डायरेक्शन तो पता होगी. यानी हमें ये तो पता है कि हमें करना क्या है, है ना, हम क्या करने के लिए दुनिया में आए, क्या हमारा मकसद है, किधर हमें जाना है, क्या चीज हमारा जो है वे क्या है ना, रास्ता हमारा क्या है, उसी के हिसाब से फिर उसके साथ जो चीजें कनेक्टेड है वो हम देखते हैं. तो उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है डायरेक्शन. क्या है हमारी डायरेक्शन? जी कुरान के स्टूडेंट्स राइट, कुरान और हदीस के स्टूडेंट्स हैं राइट. तो क्या चीज होगी हमारी डायरेक्शन, क्या है? जन्ना, सबीरुल जन्ना है हमारी डायरेक्शन. बिल्कुल अल्लाह की रजा और फिर जन्ना, ये दो चीजें हमारे, ये हमारे गोल्स हैं और इन गोल्स पे जो चलना है, जो रास्ता है, जो डायरेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें कुरान मजीद बताता है राइट, कि कैसे हम कर सकते हैं ना. जी अब ये बताइए कि जब आपको अपना गोल पता है, रास्ता पता है, अब आता है उस रास्ते पे फोकस होना, जम जाना, यानी अपने आप को उसके ऊपर चलाना, सही डायरेक्शन का डायरेक्शन अख्तियार करना ना. क्योंकि कहीं पे भी जाने के लिए दो चार रास्ते हैं है, तो उसमें से राइट वे कौन सा है, शॉर्ट कौन सा है, सही टाइम पे कौन पहुंचा देगा, इन चीजों को देखना. ठीक है, तो वो चीज है, वो मैप हमें कहाँ से मिल जाता है? बिल्कुल आप लोगों ने ठीक लिखा कि कुरान से मिल जाता है. और उसके बाद टू बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स विद रेगुलर पेस. बिल्कुल जी, वेरी गुड पॉइंट. इसके बाद क्या करना होता है, उस रास्ते पे जब चढ़ गए तो अब कंटिन्यूस एफर्ट्स हैं और रेगुलर पेस के साथ. ठीक है, लेकिन ईमान का लेवल तो घटता बढ़ता रहता है, होता है ना ऐसा? ये तो फैक्ट है कि ईमान जो है वो घटता बढ़ता है, लेकिन अपने आप को करना क्या है उसके ऊपर फर्म रखेंगे, प्लान होगा, डायरेक्शन होगी. हो सकता है कि किसी किसी दिन स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए, लेकिन अगर डायरेक्शन से ही चुनी हुई है ना, तो फिर जब ईमान का लेवल बढ़ा तो आप फिर भी अपना पेस फास्ट करके और आगे जा सकते हैं. कोई दिन खाली ना एफर्ट्स. चलिए अच्छा, इसके बाद आप मुझे बताइए, जो भी पहले बात आपने की कि इस रास्ते पे फर्म रहने के लिए, कंटिन्यूस चलने के लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है? जी अभी क्या आपने लर्न किया, क्या चीज इम्पोर्टेंट है? प्लानिंग इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल प्लानिंग करना. ठीक है, और प्लानिंग के लिए क्या करेंगे, क्या टूल्स हैं हमारे पास, कैसी होनी चाहिए हमारी प्लानिंग? मैंने एक दफा एक लेक्चर सुना था, तो उसमें एक बड़ी अच्छी सी बात थी और जिसकी अभी उस्तादा जी ने भी एग्जांपल दी कि जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, जो डायरेक्शन लेस लोग होते हैं वो इधर उधर कहीं पे भी चल पड़ते हैं ना, कि इसने बुलाया इधर चले गए, उधर बुलाया उधर चले गए, उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है. लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि डायरेक्शन हो पता भी होती है, नेकियां करना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन नेकियों में भी हम इतने प्लान्ड नहीं होते राइट. हम ऐसे नहीं कि इसका फायदा क्या होगा, ये जो मैं नेकी कर रही हूँ या ये जो काम मैं नेकी समझ के कर रही हूँ तो ये मुझे क्या बेनिफिट देगा उसके, और क्या ये करने की वजह से कोई और इम्पोर्टेंट काम तो नहीं अफेक्टेड हो जाएगा राइट, कि जिसकी जिसका कि मुझे ज्यादा रिवॉर्ड मिल सकता था. तो ये इसके अंदर भी जो है वो बहुत जरूरी होता है ना, मंजिल को मुतय्यन करके अमल शुरू करना. बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने लिखा कि रिटन फॉर्म में लिख लिया जाए, राइट डायरेक्शन फॉर राइट प्लानिंग. जी तो रिटन फॉर्म, अच्छा आप में से कितने लोगों की प्रैक्टिस है ये कि आप अपने गोल्स लिखते हैं, अपने डे को प्लान करते हैं, वीक प्लान करते हैं, मंथ प्लान करते हैं? वन लिखिए अगर आपकी ये प्रैक्टिस है तो. अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, कुलसूम करती हैं, फ्यू डेज करती हैं, उज़्मा ट्राई करते हैं, सही है. ओके ओके, तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि आज हमने ये टॉपिक भी सुना और हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सारी चीजों पर है ना, गोल हमें पता है, प्लान हमें पता है, रास्ता पता चल गया है, डायरेक्शन फिक्स करनी है और इसके लिए फिर हमें अपने आप को रेगुलर करने के लिए अपना प्लान करना है, ठीक है। अगेन हमारा साल ये एंड हो रहा है, नया साल आने वाला है, तो अगर हम इन इन महीनों को अपनी प्लानिंग के लिए यूज करें, यानी अभी से, आज से आपने आदत डालनी, ये नहीं सोचना कि अच्छा कल जनवरी से शुरू करेंगे, नहीं, आपने आज ही कमिंग वीक के लिए प्लानिंग करनी है, ठीक है। और उन प्लानिंग में अपने रोल्स देखने हैं कि हमारे कौन कौन से रोल्स हैं जो कि हमें करने होते हैं ना, जैसे आप जो है वो घर है हमारा, तो अभी से शुरू करना बिल्कुल, जो मतलब आप इसको अपने हिसाब से किसी भी तरह से प्लान कर सकते हैं, लेकिन कुछ टिप्स इंशाल्लाह हम यहाँ शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के तौर पर आपका जो रोल है, आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, राइट, लेकिन कामयाबी हर वक्त नहीं मिलती, नहीं मिल रही होती है, बस वो ये होता है कि हमारी शायद नजर बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियों पर है। जैसे भी साजा जी ने एग्जांपल दी ना कि अगर आपका प्लान था कि आपका खाना पक जाना चाहिए वीक से पहले, या आज 11 बजे तक सफाई डन हो जानी चाहिए, अगर आपने कर ली तो यू आर सक्सेसफुल, आप कामयाब है, राइट। तो छोटे छोटे गोल्स देखिए, जो भी टास्क आपका कंप्लीट हो जाता है वो आपकी सक्सेस है, ठीक है। जो नहीं हो रहा उस पर हमें होमवर्क पूरा करना ऑन टाइम एज अ स्टूडेंट आपकी आपकी प्लानिंग है, राइट। तो आप अपनी ना लाइफ को अपने रोल्स के हिसाब से डिवाइड करें। नंबर वन कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरी क्या प्लानिंग होगी, कौन से असाइनमेंट की डेट आ रही है, कब मुझे असाइनमेंट पे काम शुरू करना है, राइट। कहीं पे भी आप और भी हो सकते हैं, क्लासेस में होते हो तो अपने आप को उस हिसाब से प्लान कीजिए। हदीस याद करनी है, आज का सबक मुझे रिवाइज करना है, ठीक है, ये आपके प्लानर पे लिखा हो। उसके बाद हम बेबी को सलाह दिया, कामयाबी हम बिल्कुल। उसके बाद आप देखेंगे अगर आप एज अ वाइफ हैं तो हमारे क्या रोल्स हैं, ठीक है। उसमें देखिए कि घर की जिम्मेदारी क्योंकि हमारे ऊपर है, तो क्लीनिंग है, कुकिंग है, लॉन्ड्री है, राइट। तो हमारे प्लानर में ये सारी चीजें शामिल होनी चाहिए कि उसको प्लान करना कि किस दिन ये टास्क करना है और कब इसे डन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर एज अ मदर अपने रोल्स देखने हैं, ठीक है। तो जिस जिस कैटेगरी में आप काम करें, अगर आप जॉब करते हैं या आप कोई और वॉलंटियर वर्क करते हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को देखना है और उसके स्केड्यूल्स अपने प्लानर में डालिए और बेबी स्टेप से शुरू कीजिए। बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं, छोटे छोटे गोल्स को लेके चलेंगे और उसमें जब कामयाब होते जाएंगे इंशाल्लाह तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, इनकरेजमेंट मिलेगी और उसका हमें फिर इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। कभी काम आगे पीछे हो जाता है, बिल्कुल हो जाते हैं, ह्यूमन साइकिल है, ह्यूमन नेचर है, कभी कोई एक्स्ट्रा काम आ जाता है, लेकिन उसको फिर आप अपने स्केड्यूल में भी एडजस्ट कीजिए, आगे पीछे कीजिए और कोशिश, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हमें अपने काम को टाइम पे करना है। लेकिन अगर कोई ऐसी अनयूजुअल चीज हो गई कि आप नहीं कर पाए तो इट्स ओके, आप उसे आगे पीछे कर लीजिए, अगले दिन के टास्क में शामिल कीजिए और अगर वही जैसे था इम्पोर्टेंट अर्जेंट, उस हिसाब से फिर आप अपनी लिस्ट बनाइए, ठीक है। चलिए, ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, अगर इस पर मैं बोलना शुरू करूंगी तो मजीद आपका आधा घंटा ले लूंगी, तो इंशाल्लाह फिर हम यही रुकते हैं। लेकिन आपने अपने बनाए, बल्कि ऐसा करते हैं कि आप लोग जो अपना प्लानर बनाए ना, स्केड्यूल बनाए, तो उसमें एक मजे का काम ये कर सकते हैं कि आप उसको शेयर करें अपने ग्रुप में ना, एक ग्रुप में जरूर अपना प्लानर शेयर करें ताकि दूसरी जो सिस्टर्स हैं उनको भी मोटिवेशन हो, उन्हें भी कुछ आइडियाज मिल जाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपने अपने प्लानर को बनाकर, और अगर आपने बनाया है या बनाने की कोशिश करेंगे तो उसे अपने ग्रुप में डालिएगा, ठीक है, ताकि वहां से फिर अगर नहीं किसी ने किया तो वो उनको मोटिवेशन भी मिलेगी और आइडियाज भी मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, इंशाल्लाह फिर यहाँ रुकते हैं। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته